इस प्रातः यह सभा प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बहुत प्रार्थना करने के पश्चात इस प्रातः मैं जल्दी नहीं उठा, मैं थोड़ी देर से उठा था। और मैं समझता हूँ हर कोई जानता है कि ये अब क्यों है। उस प्रातः मैं घर आया यानी उस रात्रि, और मेरा पड़ोसी बाहर खड़ा हुआ था और वो और उसकी छोटी लड़की, उसकी पत्नी चिकित्सालय में जच्चा खाने में नर्स थी, इसलिए उसके हाथ में लगभग इतनी लंबी छड़ी थी और उस पर एक प्रशंसा वाला लेख था, कुछ रिबन, और उस चीज पर लिखा था जैसे कि दादा ब्रानम। मेरा विश्वास है कि लगभग 3:43 या 4:43 11 अक्टूबर, तब नीचे बड़े कोष्ठ में नीचे लिखा था, जितना आप सोचते हैं उससे आप अधिक बूढ़े हैं। इसलिए अब मेरे पास विधिवत अधिकार है कि प्रातः थोड़ा अधिक समय तक विश्राम करूं। भाई राइट, क्या ये ठीक बात है, जबकि आप दादा हो गए हैं। और इसलिए मेरा अनुमान है बहन किड का सा बहाना नहीं है इस प्रातः कि यहाँ ना हूँ जबकि आप ओहियो से आती हैं। इसके बाद मैं स्वयं को लगभग 10 वर्ष अधिक बूढ़ा सोचता हूँ, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ मेरे पास लगभग 7 या 8 पाउंड का एक छोटा पोता है। इतना छोटा भोंडा बालक मैंने कभी नहीं देखा। कहा कि वो ठीक अपने दादा के समान दिखाई पड़ता है। और मैं देख रहा था कि वो कहाँ चला गया, बिल्ली कहाँ चला गया। पिछली रात्रि अपने टेलीफोन करके मैं हाल की ओर आ रहा था, मैं जॉर्जिया के और आसपास के निष्ठावान मित्रों के झुंड से मिला और हम सब वहाँ बाहर थे, उन छोटे छोटे बालकों को देख रहे थे। वे सुंदर हैं। अब वहाँ केवल मुझे सदा कुछ ऐसा लगता है कि बिल्ली आप डरते हैं, आप उन्हें तोड़ मरोड़ देंगे। आप देखिए वे इतने छोटे होते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहन भीलर ने कहा था, मैं सोचा करती थी, वो भी यही सोचा करती थी, परंतु बाद में उन्होंने पाया कि वे इतनी सरलता से नहीं टूटेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये लगभग ठीक है। बीते कल दोपहर बाद मुझे अपनी कलीसिया की बहन के घर जाने का विशेषाधिकार मिला, उसकी पुत्री के घर, और मैं सोचता हूँ कि वो भी यहाँ कलीसिया में है जहाँ भाई नेविल को एक जन्मदिन की दावत थी और एक दूसरा ठहराव जो उन्होंने कल पार कर लिया। और इसलिए हम लोग भाई नेविल से कहते हैं एक वास्तविक आनंद भरा जन्म दिवस हम में से प्रत्येक, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा भाई है और सही में उन्होंने थोड़ा सा 25 पार किए हैं और इसलिए मेरे समान, और इसलिए हमने अब ये दूसरी बार पार किया है। अब ये बूढ़े मनुष्य हो रहे हैं जब आप निशाने से दूसरी बार पार होते हैं, आप जानते हैं। मैं उस प्रातः को याद करता हूँ कि फ्रैंकी बेवर यहाँ आया और हमसे अगला पड़ोसी है, उसकी पुत्री अब वहाँ रहती है, वो फ्लोरिडा में है। मैं और फ्रैंकी एक साथ मिलकर विद्यालय गए थे और फ्रैंकी ने जन्म दिवस की भेंट चढ़ाई थी और तब मैंने लगभग 3 या 4 वर्ष हुए प्रचार कर रहा था। मैंने यीशु तक फ्रैंकी की अगुवाई की थी और उसने एक चौथाई डाला था और मैं सोचता हूँ कि मैं 22 का था और उसने 54 डाली थी और मैंने सोचा, ओ क्या आपका अर्थ ये मुझे बताने का है कि फ्रैंकी वेबर 25 वर्ष का है। ओ मैं जब हुआ तो उस समय भयभीत था। अब मैं उनमें से 3 तय करने जा रहा हूँ, इसलिए तब जल्दी ही, इसलिए ये बीत जाने के लिए अधिक समय नहीं लेते। जब मैं यहाँ भाई और बहन किडी को उनके 80 में देखता हूँ और अब भी मजबूत चले रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा करें कि मैं अपनी 52 में शिकायत करूँ। और वे आप 80 और भाई किड 81, क्या ये ठीक है, 81, और वे अब भी सेवकाई में हैं। मैं बताता हूँ कि इससे हमें हिम्मत मिलती है, क्या नहीं, निश्चय ही मिलती है, निश्चय ही प्रभु हमारे लिए भला है। अब केवल एक बुरी बात है जिससे मैं आशंकित होता हूँ कि यहाँ प्रातः मैं सभा लूँ और ये बहुत ही भयानक है, सुनने में अशोभनीय लगता है ये कहने में, परंतु मेरे बहुत सारे मित्र जो दूर दूर से इन सभाओं के लिए आए हैं, मैं यहाँ इवेंट्स को नहीं देखता हूँ परंतु वे यही कहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वे एक भी उसमें नहीं चूकते। और आप जानते हैं कि प्रति रविवार वे कितने मील कार चलाकर प्रचार को सुनने आते हैं? 1300 मील। वे प्रति सप्ताह $60 से $70 के बिना इस चक्कर को पूरा नहीं कर सकते। ये ठीक बात है, समय पर वे यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं, यहाँ आते हैं और भुगतान। अब केवल इतना ही नहीं, परंतु यहाँ एक छोटा भाई अलाबामा से है, लगभग उतनी ही दूरी कार चलाता है हर सप्ताह। भाई ओ क्या भाई वेस्ट, मैं वो मुझे लड़का सा प्रतीत होता है। वो एक पिता है, बहुत सारे बालक हैं, परंतु वो मुझे सदा स्मरण दिलाता है, युवा दिखाई पड़ता है, वो और उसकी पत्नी। भाई वेस्ट, भाई और बहन पामर पीछे बैठे हैं, वहाँ दक्षिण मैकन जॉर्जिया से हैं, और वो एनग्रेन, वे नीचे मैसी टेनेसी से अधिकतर यहाँ होते हैं। इस प्रातः क्या वे यहाँ हैं? मैं वे अधिकतर बहन एनग्रेन और नीचे मैसी टेनेसी से झुंड, रुकिए, हाँ पीछे, वहाँ पीछे, और वहाँ और भी नाम पुकारने के लिए बहुत सारे, कुछ दक्षिणी केंटकी, कुछ शिकागो के आसपास से, कुछ शिकागो और शिकागो के ऊपर से, आसपास से। रविवार मैं समझा कि यहाँ पर एक व्यक्ति कैलिफोर्निया से था, उसे यहाँ थोड़ा सा रुकना था, मुझसे मिलना चाहता था, और सही में मैं सभा के पश्चात व्यस्त था और वो व्यक्ति वापस चला गया, मैं उसे मिल नहीं पाया। दूसरा वाला कहीं इलिनॉय से आया था। यदि वो व्यक्ति यहाँ पर है तो इस प्रातः उनके अच्छे स्वादिष्ट सेब मैंने खाए हैं, ऐसे जो कभी नहीं खाए, और वो मेरे लिए सेबों की पेटी लेकर आया, और उनमें से एक भाई नीचे जॉर्जिया से था, मैं विश्वास करता हूँ कि या कहीं और से, देसी फलों का एक बड़ा ढेर लाया, लगभग कागज के लिफाफे के बराबर, और ओ मैं वास्तव में उन्हें खा सकता हूँ। इस समय मैं ठीक है, इन दिनों में मैं मन भावना खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरी माँ के चले जाने के बाद से मैं नए दर्शन के लिए प्रभु की खोज कर रहा हूँ, केवल हल्की चीजें खा रहा हूँ, और जैसे कि जितना थोड़ा हो सकता है 20 पाउंड वजन घटा दिया है, जो कि अब मैं उपवास नहीं रख रहा हूँ, मैं नहीं रख, नहीं, वो केवल वो करने के लिए है, वो प्रभु को वो नहीं दे रहा हूँ, आप प्रभु को सबसे अच्छा देना चाहते हैं जो आपके पास है, ना कि मैंने भाई समर को देखा और पीछे उन लोगों को भी, वहाँ बहुत सारे हैं, मैं जैसे कि पिछले रविवार लोगों का उल्लेख कर रहा था जो माँ के साथ बैठे थे और बातें, और एक वास्तविक निष्ठावान बहन वहाँ थी, मैं उस महिला का नाम भूल गया, यदि आज सुबह वो यहाँ है मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु उनमें से एक बहन बीलर थी और दूसरी बहन थी, और भाई स्टेफी, और बहुत से, मैं आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरा अर्थ ये नहीं होता कि जब मैं नाम या व्यक्ति को अनदेखा कर देता हूँ, वे सब कितने ईमानदार थे, और कभी कभी वे यहाँ बैठे होते हैं, मैं किसी और का उल्लेख करूंगा जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, परंतु मैं उससे मेरा अर्थ समझ झुंड से अर्थात प्रत्येक से होता है, आप देखिए ये इतना अच्छा है, प्यारा और दयालु हमारे लिए होता है, और निश्चय ही हम उसकी सराहना करते हैं। और अब इस प्रातः हम परमेश्वर के वचन को फिर से लेने का यत्न कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक्तव्य को पूरी रीति से स्पष्ट करूंगा कि मैं किसी भी सभा में स्वयं को दिखाने नहीं आता हूं। मैं यहां ये कहने के लिए नहीं आता हूं, अच्छा मैं चाहता हूं प्रभु से प्रार्थना करूं कि मुझे एक संदेश दे जिससे लोगों को अच्छा अनुभव करवाऊं और चिल्लाऊं। हमारे पास ऐसे बहुत से थे, परंतु और हम उनकी सराहना करते हैं, वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, समझे, परंतु मैं क्या जानना चाहता हूँ, प्रभु तुम मेरे विचारों को ऐसे निर्देशित कर जो लोगों की सहायता करेगा, जो लोगों को परमेश्वर के समीप रखेगा, जो उनके लिए कुछ करेगा, जो इतना अधिक नहीं जैसे कि उन्हें आत्मिक बनाए, परंतु उन्हें ज्ञान में बढ़ाऊं और परमेश्वर के चेतावनी में, जिससे वे जानेंगे कि जब शत्रु आता है तो कैसे स्थिर रहें। मैं एक बहन से बातें कर रहा था जो इस सप्ताह यहाँ पर आई हुई है, बहन पामर, उसने कहा जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इस गांव में रही हूँ, ये आप केवल यहाँ आकर ही जान सकते हैं, हर बार मैं घाटी में जाता हूँ, जैसे ही पहुँचता हूँ बीमार हो जाता हूँ, ये घाटी में यहाँ अस्वस्थ है, हम ये जानते हैं, परंतु यहाँ परमेश्वर के बहुत सारे बालक हैं, और इसलिए इन दिनों में मैं अब मैं प्रभु को खोज रहा हूँ ताकि सीधा वास्तव में एक संदेश परमेश्वर से पाऊँ, समझे। और मैं, परंतु परमेश्वर की सहायता जब तक वो आता है मैंने थामे रहने के लिए ठाना है, यही कि जब तक वो मुझसे कोई बात कहता है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि वहाँ होना चाहिए कुछ है जो घटित होने के लिए यहाँ आसपास में तय है, और मैं चाहता हूँ कि वो क्या है, और मैं सीधा परमेश्वर से जानना चाहता हूँ ताकि मैं ये कह सकूँ ये प्रभु यूं कहता है, समझे। और तब आप लोग तब जानेंगे ये मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे करने की कोशिश करना चाहता हूँ ताकि या पहले उससे सुनूं, क्योंकि यदि वो अपना वचन एक व्यक्ति में डालता है, देखिए फिर वो व्यक्ति नहीं रहा, वो है। तब यदि मनुष्य की बात उसमें स्वयं में हो तो फिर चाहे जो हो इसका कोई महत्व ना होगा, परंतु यदि उसका प्रभु का वचन मनुष्य में है तो ये सामने आएगा और तब ये बिल्कुल ठीक होगा। यही है जो प्राधिकार हमें बाइबल में दिया गया है, व्यवस्था विवरण के लगभग 20वें अध्याय में। मैं विश्वास करता हूँ कि कहा है ध्यान दें, और यदि कोई प्रभु के नाम से बोलता है और ये घटित नहीं होता तो फिर कोई उस व्यक्ति पर ध्यान ना दे, समझे। परंतु यदि वे ये बोलते हैं और ये घटित होता है तो अच्छा है कि तुम वो सुनो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। परमेश्वर ने ऐसा ही है, उसकी अपनी एक निरंतर योजना बाइबल में है। हम जानते हैं कि कैसे इसे पढ़ें, परंतु कुछ विशेष बात है जो कलीसिया के लिए है और समय के लिए, और बातें जो उसने यहाँ बाइबल में नहीं लिखी, इसलिए वो अपनी आवाज को एक व्यक्ति में डालता है और वे इसे बोलते हैं। देखा, तो इसलिए व्यक्ति को जांचने के लिए कि मालूम करें कि जिस प्रकार उसने कहा घटित हुआ कि नहीं, तब यदि ये होता है और फिर वैसे ही होता रहता है तो फिर हम जानते हैं ये प्रभु की ओर से आया है, तब हमें विश्वास होता है, तब जो आने वाली बातें हैं उसके लिए तैयार रहें। इस प्रातः मैं दो या तीन स्थानों से वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, और पहले मैं निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि निर्गमन के चौथे अध्याय से आरंभ करके, और अब मैं उद्घोषणा कर सकता हूँ, जब तक आप लोग इन वचनों को पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं जो आपसे बोलना चाहता हूँ उसकी उद्घोषणा कर सकता हूँ कि इस प्रातः प्रभु ने मेरे हृदय पर बात करने के लिए क्या रखा है। मैं नहीं जानता वो इससे लोगों के साथ क्या करेगा, हो सकता है कि यहाँ एक व्यक्ति को निर्देशित करेगा, हो सकता है बाहर टेप के देश में कहीं और, परंतु मैं आज प्रातः ये घोषणा करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ पिछले रविवार प्रातः मैंने ए ट्रू विटनेस, एक सच्ची गवाही पर प्रचारा था, और इस रविवार प्रातः प्रभु ने चाहा मैं एक सच्चा चिन्ह जो अनदेखा कर दिया गया इस पर प्रचार करना चाहता हूँ। मैं पिछली रात्रि भाई पामर मुझे बता रहे थे, उस पिछले रविवार की सुबह मैं उस विषय पर बोला या कहा कि मैं इस रविवार की प्रातः बोलने जा रहा हूँ कलीसिया के चार मिलाप इस पर, और जब मैं पिछली रात्रि गया मैं अक्सर इसे मिलाता हूँ, जो मैं नहीं जानता आपको करना चाहिए कि नहीं, परंतु मेरे पास बहुत सी बातें हैं, उन पर सोचना प्रयत्न करना मुझे कुछ मिलता है, तो मैं इसे कागज के टुकड़े पर लिख लेता हूँ, देखा, और मैं उस पर ध्यान करना चाहता हूँ, और मेरा जो अर्थ था इससे वो सही में चार मिलाप नहीं था, सच में मैंने उसी प्रकार कहा, परंतु मेरा जो अर्थ था कि कलीसिया के शासन प्रणाली के चार रूप हैं, और ये करने के लिए मुझे बहुत सारा इतिहास इकट्ठा करना पड़ा, और हो सकता है अगली बार मैं उसे लूंगा, परंतु ये मेरे अध्ययन के समय से ये अधिक समय लेगा, क्योंकि आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा और तारीखें आदि को लेना, क्योंकि आप सब लोग ये समझते हैं हर कहीं, क्यों हम पूर्णतः पक्के होना चाहते हैं इन बातों को कहने से पहले, उन्हें ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ खड़े होकर सबसे ऊंचा कार्यस्थल संभाले हुए हैं जो कि संसार में संभाला जाता है, एक सेवक बहुत ही सच्चा और सही, बिल्कुल ठीक, हमें इसी प्रकार होना चाहिए। इसे करने के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। अब निर्गमन की पुस्तक में चौथा अध्याय, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रस्तुति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वो क्या है, वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वो लोग प्रतिति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वो उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वो फिर से सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। आप दो चिन्हों को देखते हैं और प्रत्येक चिन्ह की एक आवाज थी। मैं आठवां पद फिर से पढ़ दूं। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात को न माने तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। और अब संत यहुन्ना पहला अध्याय और छठवां पद, हम इन पदों को पढ़ते हैं। इस पद को संत यहुन्ना पहला अध्याय और छठवां पद। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यहुन्ना था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिसका नाम यहुन्ना था। और हिजकेल में 24:24 में इस वचन को पुराने नियम में रखकर भविष्यद्वक्ताओं को नए नियम में लेने का यत्न कर रहा हूँ, इसलिए जिससे आप समझ जाएंगे कि ये निर्गमन से होते हुए आरंभ से अंत तक है। इस रीति यह स्केल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसे ही तुम भी करोगे। और जब ये हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। अब आइए एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं, जैसा कि हम आदर पूर्वक उसके पास जाते हैं अब प्रार्थना के मार्ग से होकर। परमेश्वर, हम तेरे पास अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम में आते हैं, यीशु मसीह धर्मी। हम ये जानते हुए आते हैं कि वो हमारी सुनेगा, क्योंकि हम औरों के समान नहीं आते जो अभी अभी इस भवन में आया है, परंतु हम साहस और विश्वास के साथ आते हैं, ये विश्वास करते हुए कि जो उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे करेगा। इसलिए हम आज मांगते हैं प्रभु कि तू हम में से प्रत्येक को जो यहाँ पर उपस्थित है लेगा, प्रचार मंच से आरंभ करके भवन में पीछे तक समस्त क्षेत्रों में, और प्रत्येक हृदय को खोलें और हमारे सुनने का खतना करें कि जीवित परमेश्वर का वचन इस प्रातः स्वर्ग से आ सके और हमारे हृदयों में उंडेला जाए, ताकि जैसा कि हम प्रभु का वचन सुनते हैं विश्वास कर सकें कि जैसे इस प्रातः हमारे कानों में पढ़ा गया। और हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन सत्य है। और अब जैसा कि हम देखते हैं विपत्ति की घड़ियां आ रही हैं, परमेश्वर का सारा प्रकोप आकाश में तैयार हो गया है, और ये विशेष किसी समय इस राष्ट्र को कुछ भी हो सकता है जिसने तुझे छोड़ दिया है, और एक बड़ा महान धमाका हो सकता है जो कि राष्ट्र को पूरी तरह से संसार के नक्शे पर से साफ कर देगा। इसके पीछे अभक्ति राष्ट्र की धमकी है, वो ऐसा करने को उत्सुक है, और ये जानते हुए बजाय इसके कि परमेश्वर के समीप आए, वे और दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं। ये जानते हुए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और सारा वचन इस दिन के लिए भविष्यवाणी करता है, तो हम प्रभु की चेतावनी को ले लें और सुस्त और पड़े सोते न रहें, जैसे कि था। होने पाए कि हम उठकर अपने को झकझोरें, होने पाए कि हमें आज ऐसी समझ मिले जो इसके पहले कभी ना मिली हो। होने पाए कि हमारे हृदय इस दिन के पश्चात अग्नि से प्रज्वलित हो जाएं, हमारे प्राणों में आग भड़क जाए जो समस्त राष्ट्र में फैल जाए प्रभु, और जहाँ कहीं हम हों जीवित गवाही हों, बीमारों और दुखियों, वे जो आवश्यकता में हैं, दोनों वे जो हमारे मध्य में हैं और हमसे बाहर, तेरे लोग जहाँ कहीं भी हों उन्हें आशीषित करें प्रभु, अपने वचन को आशीषित करें, अपने दास को जो दास इसे सुन रहे हैं पवित्र करें, ताकि हम समीप के अनुभव उसकी उपस्थिति में एक साथ लाए जाए जो पहले जीवन में कभी नहीं हुआ। मैं केवल इन्हीं के लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ जो उपस्थित हैं, परंतु उनके लिए भी जो समस्त संसार में इस टेप को सुनेंगे, ताकि वे जीवित परमेश्वर की कलीसिया में लाए जाएं, क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं कि केवल एक मार्ग है कि हम इस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं, वो आत्मा के जन्म के द्वारा। तब हम एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लेते हैं। परमेश्वर, में संसार में उन प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू स्वयं के लिए महिमा पाएगा, और होने पाए हम अपने प्राणों को ऐसा तैयार करें कि समस्त संसार में एक ही आवाज के साथ हम चिल्ला सकें, प्रभु यीशु तू आ जा। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक सच्चा चिन्ह जिसको अनदेखा कर दिया गया। मनुष्य फिरौन के दिनों से आज तक चिन्हों को ढूंढता है, और यीशु ने हमें एक समय के लिए बताया कि चिन्हों को ढूंढने वाले होंगे, और कहा कि दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्हों को ढूंढेगी, परंतु फिर भी वे चिन्ह पाएंगे, और वो पीढ़ी पुनरुत्थान का चिन्ह पाएगी, जो कि एक निर्बल दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी होगी जिसे पुनरुत्थान का चिन्ह दिया जाएगा। परंतु जैसे ये वचन यहेजकेल में हमारे सामने रखा है, 24 अध्याय 24वां पद, ये भविष्यद्वक्ता चिन्ह बनाया गया था, और ये चिन्ह है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। ये मनुष्य इज़राइल के लिए चिन्ह बनाया गया, और सारे वचन में होते हुए परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को चिन्ह के लिए प्रयोग किया, और उन्हें सदा अनदेखा किया गया। उन्होंने कभी भी चिन्ह को नहीं पहचाना, वे सदा भावना के चिन्हों को देखते रहे, यहाँ तक कि फरीसी जो यीशु के दिनों में थे बोले, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा, परंतु यीशु ने उनसे उल्लेख किया कि वे चिन्ह तुम्हें पहले ही चिन्ह मिल चुका है, कहा तुम आकाश को जांच सकते हो, तुम उस चिन्ह को देख सकते हो, तुम कहते हो यदि ये लाल और धूमिल है कल मौसम खराब रहेगा। यदि उन्होंने चिन्ह को देखा होता तो वे उसे देखते और जानते कि वो उनके लिए परमेश्वर का चिन्ह है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी उसके विषय में उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही थी, परंतु वे फिर भी चिन्ह की आशा कर रहे थे। कितना अनोखा है जो वो मनुष्य करेगा जो चिन्ह के लिए प्रतीक्षा करेगा, जबकि वो चिन्ह ठीक उनके साथ, ठीक उनके मध्य में था। अब इज़राइल इसी दशा में आ गया था, और कभी उस चिन्ह को कैसी पीड़ा में से निकलना पड़ता था, आश्चर्यजनक था। वो उत्पीड़ना जिसमें से होकर यीशु निकला कि परमेश्वर के उस चिन्ह को सिद्ध करे कि वही मसीह था। हम यहाँ हिस्केल नाम इस युवक भविष्यवक्ता को पाते हैं, निरंतर सारे समय के लिए चिन्ह हो गया था। कैसे उसने स्वयं को यातनाएं दी। एक स्थान पर हम उसे पाते हैं जहां वो अपनी बाईं करवट पर 390 दिनों तक लेटा रहा। परमेश्वर ने उससे कहा, थोड़ी सी सेम और थोड़ा सा शोरबा ले, एक साथ मिला ले और इसे पका और अपने पास को रख ले और जाकर एक ईंट पर रख दे और अकेला उल्टे हाथ की करवट पर पड़ा रहे, पलटना नहीं 390 दिनों तक। इस पर सोचिए। और तब कहा, सीधे हाथ की ओर करवट ले और फिर से 40 दिन तक लेटा रहे। और उसने यहाँ कहा, तू क्या देखता है। हिस्केल ने कहा, क्योंकि तू लोगों के अधर्म को अपने ऊपर सह रहा है, प्रत्येक दिन उनके लिए वर्ष गिना जाएगा। ऐसा होते हुए प्रत्येक दिन वो वहाँ लेटा, जिसका अर्थ एक वर्ष वे बंधुआई में रहेंगे और उनके अधर्म परमेश्वर के सामने स्मरण किए जाएंगे और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। परंतु वो यातना जिसमें से होकर उस मनुष्य को निकलना है, ये अवश्य क्यों होगी। बहुतों ने आश्चर्य किया, क्यों इस प्रकार की बातें करने वाले मनुष्य के लिए अवश्य है। ये इसलिए है क्योंकि वे लोग वचन नहीं पढ़ेंगे और वे प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर सर्वसत्ताक है और वो अपने भविष्यद्वक्ता को एक चिन्ह होने के लिए भेजता है। लोग पढ़ेंगे नहीं, वे पढ़ने के लिए चिंता नहीं करते और वे प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी करने के लिए दूसरी बातें हैं। वे प्रार्थना के लिए समय नहीं ले सकते और बाइबल उनके लिए उबा देने वाली चीज है। इन आधुनिक दिनों के लिए काफी कार्य नहीं है क्या, यानी किन्हीं भी दिनों के लिए। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये पौलुस ने कहा, तुम परमेश्वर की पत्रियां हो जो सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाती हैं। परमेश्वर लोगों को चिन्ह के लिए प्रयोग करता है कि अपने चिन्हों को दिखाए, और बहुत सी बार वो चिन्ह और हर बार अधिकतर जब तक ये चुने हुए लोगों के साथ नहीं है, वो चिन्ह अनदेखा कर दिया जाता है और आलोचना, उपहास उड़ाना, निकाल देना और विचार करना, यहाँ तक कि पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के दिनों में उन्हें पागल और परेशान लोग समझा गया। उन्होंने सोचा कि वे भविष्यद्वक्ता मानसिक तंत्रिका रोग से ग्रस्त हैं, कि वे उनके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी थी और वे उन्हें जंगल में से आता हुआ देखते होंगे और चिन्ह दिखाते और फिर से जंगल में वापस चले जाते और वे उनका मजाक उड़ाते, क्योंकि वे पवित्र वचन नहीं जानते थे। यीशु ने एक बार एक फरीसी को पुनरुत्थान के विषय में बताया। उन्होंने कहा, हमारे पास व्यवस्था है जो कहती है कि यदि भाई मर जाए और पत्नी को बिना संतान के छोड़ जाए, तो फिर उसका भाई उसकी पत्नी को लेकर उस मरे हुए के लिए संतान उत्पन्न करे। और कहा, हमारे यहाँ एक था जिसके 7 भाई थे और पहले ने उसे पत्नी किया और वो मर गया और कोई संतान ना छोड़ गया, और तब उसके भाई ने उसे लिया और तब वो मर गया, इसी प्रकार 7वां भी, और अंत में स्त्री मर गई। कहा, अब पुनरुत्थान में, कहा अब वो पुनरुत्थान में उन 7ों में से किसकी पत्नी होगी। ओ, मैं इस वचन से प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, तुम पवित्र वचन को ना जानने से सदा गलती करते हो, ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। ओ, आज वो कैसे भड़काता यदि वो यहाँ खड़ा होता। तुम सदा गलती करते हो पवित्र वचन को ना जानने से, ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। परमेश्वर की सामर्थ वचन से संबंधित है। तुम बहुत ही बड़ी गलती करते हो। तब वो ये कहता गया, पुनरुत्थान में वे ना तो विवाहित होंगे ना ही विवाह करेंगे, परंतु वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। उसने ये नहीं कहा कि वे स्वर्गदूत होंगे, परंतु स्वर्गदूतों के समान होंगे। उनमें यौन इंद्रियां ना होंगी, वे विवाह नहीं करते ना ही विवाह में देते हैं। हम मरणावस्था के दिनों में रह रहे हैं, यानी मरणहार मरणहार राज्य के दिन। परंतु एक दिन आ रहा है जब एक अमरणहार का राज्य आ रहा है, और उस अमरणहार राज्य में जहाँ छुड़ाए गए लोग रहेंगे, वे जो छुड़ाए गए हैं, और वो जीवन जो इस देह को छोड़कर वापस परमेश्वर के पास चला जाएगा जिसने ये दिया है, फिर से वापस चला जाएगा जीवन के वृक्ष से किसी दिन सर्वदा राज्य करने को। कैसे ये युवा मनुष्य, युवा भविष्यद्वक्ता बलिदान हुआ और अपने समस्त जीवन को दंड पाने वाले लोगों के लिए चिन्ह होने के लिए दे दिया, जिसे कि वे पाने वाले थे, क्योंकि वे जिसे कि हम कहते हैं तुच्छ, वे परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते थे, और उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास नहीं किया, और उन्होंने केवल उसका उपहास उड़ाया। और परंतु इसके अलावा कोई अंतर नहीं कि वे इसका विश्वास नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने ये देखा, जो भी हो उनके पास ये था। इजाबेल ने ये नहीं स्वीकार करना चाहा कि आहाब उसका पास्टर था, परंतु वो था। परमेश्वर ने देखा कि जो भी है उसके पास चिन्ह है। ऐसे ही आज ये राष्ट्र है। धर्मी और ईमानदार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कुछ और नहीं होने देगा, केवल जिसे हम घटित होते हुए देखने के लिए तय हुए हैं, कहीं भी बिना किसी चिन्ह के, उसके पास ये सदा था। अब हमें इसे देखना है, और अब मैं निश्चित हूँ कि वे जिनके पास वचन की अच्छी समझ है जानते हैं कि कैसे देखें। नू आने वाले न्याय के लिए अपने दिनों के लोगों के लिए चिन्ह था। नू अपने दिनों में सन की समझा गया, वो एक भविष्यद्वक्ता था। नू को ये समझा गया था कि उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, और वो मनुष्य हथौड़े से वर्षों वर्षों तक एक नाव बनाता रहा, जबकि पृथ्वी पर पानी भी ना था सिवाय जो उन सोतों का था। और उसने किसी बात की भविष्यवाणी की जो कि शारीरिक बुद्धि के लिए हास्यपद थी। उसने कहा, ऊपर आकाश से पानी आ रहा है। कोई संदेह नहीं, बहुतों ने उससे कहा होगा, मुझे दिखाओ कि कहाँ है। विज्ञान कहेगा कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि वहाँ ऊपर कोई पानी नहीं है। परंतु फिर भी यदि परमेश्वर ने कहा है कि ये आकाश से आ रहा है, तो परमेश्वर इसे देखेगा कि वो अपना वचन पूरा करे। और जबकि अब भी कोई पानी दृश्य में नहीं था, जबकि आकाश में कभी भी बादल नहीं छाए, कभी भी पानी की बूंद नहीं बरसी, वहाँ वर्षा जैसी कोई बात नहीं थी, तो भी नूह वर्षा के लिए एक नाव तैयार कर रहा था। ये एक जीवित प्रमाण था कि ये भविष्यद्वक्ता जो बात कर रहा था उसका विश्वास कर चुका था, क्योंकि वो इसके लिए तैयारी कर रहा था। और कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में विश्वास करता है, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, आप उसके लिए तैयारी करेंगे। क्या मैं नूह के दिन पर एक मिनट के लिए रुक सकता हूँ? जैसे कि यीशु ने कहा, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। यदि कलीसियाएं आज विश्वास करती हैं कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं, तो वे उसका पालन करते जो वे कहते हैं। और हम कैसे बड़े सुंदर भवनों को बना सकेंगे और लाखों डॉलर भवनों में खर्च करेंगे और बड़े लंबे चौड़े फैले हुए संगठन और इस प्रकार की चीजें, और ये प्रचार करते हुए कि मसीह किसी भी समय आ रहा है, हम कैसे कर सकते हैं? हमारे भक्त मंडली को देखिए और उन्हें देखिए, परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग हो रहे हैं और संसारिकता में जा रहे हैं और इसे कलीसिया में ला रहे हैं और एक साथ मिला रहे हैं, और हम इसकी अनुमति देते हैं। लोकप्रियता के कारण और लोकप्रिय विचारों के कारण और सांप्रदायिक मतभेद अगले संगठन में निकलने का यत्न कर रहे हैं। जो हम प्रचार करते हैं उसका आचरण कैसे कर सकेंगे? और संसार इसे देखता है, वे ये जानते हैं। इसलिए धर्म एक न्यायपूर्ण बात हो गई है, जैसे कि केवल किसी वर्ग से संबंधित हो, यानी किसी चीज के समाज से संबंधित हो। मसीह का उद्धार एक समाज नहीं है, ये किसी में मिल जाना नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है। अब नूह वही प्रकट कर रहा है जो वो बात कर रहा है। उसने कहा न्याय की एक बाढ़ इस अधर्मी पीढ़ी के ऊपर आ रही है और परमेश्वर स्वर्ग से वर्षा करेगा और वो समस्त पृथ्वी को पानी से डुबा देगा। और वो केवल यही नहीं करेगा, परंतु वो एक बच निकलने का मार्ग बना रहा था और लोगों से आग्रह कर रहा था कि यहाँ आ जाएं, परंतु वे उसकी नहीं सुनेंगे। परंतु नूह एक भविष्यद्वक्ता के समान उस पीढ़ी के लिए चिन्ह था, एक चिन्ह जिसके विषय में बुरी बातें कही गईं, एक मनुष्य जिसे एक पागल समझा गया, उस किसी वस्तु को तैयार कर रहा है जो कहीं भी कोई प्रमाण नहीं था, यानी कभी पहले भी नहीं था, जिससे कि उसका कभी प्रयोग भी किया जा सके। परंतु इसी प्रकार से लोग आज ऐसे ही सोचते हुए प्रतीत होते हैं। वे गिरने वाली छत के विषय में सोच सकते हैं, वो गिरने वाली छत आपका क्या भला करने जा रही है, जबकि एक पेड़ या चट्टान भी इस पृथ्वी पर ना बचेगी। हमारे पास गिरने वाली छत है, मसीहों के पास है। जैसा कि मैंने कुछ रविवारों पहले कहा था, यानी मार्ग पर कहीं चलते हुए सोचा था कि ये गिरने वाली छत नहीं है, ये शरण में आ जाना है। हम इसमें कहाँ गिरते हैं? सिर के बल अपने संपूर्ण हृदय के साथ और अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी बुद्धि के साथ मसीह में गिर जाते हैं। परमेश्वर की नाव बचाव की है, परंतु नूह एक सन की उन दिनों में समझा गया, प्रचार की मूर्खता और लोगों के सामने चिन्ह दिखाने, उन्हें चेतावनी देने, संसार को दोषी ठहराया, नाव बनाने के द्वारा संसार को दोषी ठहराया, जबकि उसको तैरने के लिए वहाँ कोई पानी नहीं था। उसने संसार को दोषी ठहराया, बाइबल ने कहा, इब्रानियों 11वां अध्याय। उसने संसार को दोषी ठहराया, उसके बनाने के द्वारा अपने परिवार को बचा लिया, और परमेश्वर का चिन्ह उस दिन के आने वाले न्याय के लिए हुआ। क्या ही महिमामय बात है। वर्षों बाद एक दूसरा चिन्ह आया, वो मूसा था, एक भविष्यद्वक्ता, वो इसराइल के लिए परमेश्वर का चिन्ह था। वे 400 वर्षों से गुलामी में थे और परमेश्वर ने उनके लिए चिन्ह तैयार किया छुटकारे से थोड़ा सा पहले, और वो इसराइल के छुटकारे का चिन्ह था और मिस्र के लिए न्याय का चिन्ह। नूह अपने लोगों के लिए छुटकारे का चिन्ह था और न्याय का चिन्ह नष्ट होने वाले संसार के लिए, अविश्वासी के लिए। वही पानी जिसने संसार को घोटकर और संसार को डुबा दिया, वही केवल नूह के बचने का माध्यम था। उसे केवल एक ही चीज बचा सकती थी, वो न्याय था। केवल एक ही चीज है जो आज कलीसिया को बचा सकती है, वो न्याय है। परमेश्वर ने न्याय को साहुल पर रखा है, परंतु नूह ने वही प्रचार किया, वो चिन्ह बन गया। अब इसराइल 400 वर्षों के पश्चात वे छुटकारे के लिए चिल्लाने लगे, और परमेश्वर स्वयं को कभी प्रकट नहीं करता और स्वयं को जब तक नहीं दिखाता जब तक कि लोग उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते जो वो दर्शाता है। अब ओ वहाँ क्या कहा जा सकता था कि कैसे परमेश्वर ने इस राष्ट्र को नंगा छोड़ दिया। वे भली प्रकार जानते हैं, अखबार इसे बार 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 प्रकाशित करते हैं, उसके आने के चिन्ह दिखाए जा चुके हैं और वे निरंतर होते जा रहे हैं। उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया, उनके पास कोई बहाना नहीं है। हम अंत में हैं। परमेश्वर केवल तभी ही भविष्यद्वक्ता भेजता है जब लोग भविष्यद्वक्ता को चाहते हैं। परमेश्वर अपना चिन्ह भेजता है जब लोग चिन्ह के लिए तैयार होते हैं, परंतु बात यह है कि लोग अक्सर वे एक स्थान पर आते हैं कि वे भावुकता को चाहते हैं, यानी वे कुछ चाहते हैं। हमें स्वर्ग से चिन्ह दिखा, परंतु जब परमेश्वर चिन्ह भेजता है तब वे इसे देखना नहीं चाहते। इसलिए ये बुद्धिमानों और समझदारों की आंखों से छिपा रहता है कि बालकों पर प्रकट हो गया जो सीखेंगे। उन्होंने इसे अनदेखा किया है, चिन्ह को। कैसे इज़राइल को जान लेना चाहिए जब वो ठीक बालक जन्मा था, जब उन्होंने देखा और वर्षों के समय के द्वारा देखा जिसमें वे रह रहे थे। तेरे लोग एक प्रदेश में 400 वर्ष तक परदेशी रहेंगे, परंतु मैं फिर उन्हें बाहर निकाल कर लाऊंगा। उन्हें समय को जान लेना चाहिए था कि समीप है, जब उन्होंने देखा कि भविष्यद्वक्ता बालक जन्मा है। यहाँ तक कि माता पिता अमराम और योकेबेद राजा की आज्ञा से नहीं डरे, और उन्होंने अनिच्छा से उसे नदी में फेंक दिया जहाँ मगरमच्छ थे, उनमें से एक ने भी उसे नहीं काटा। उन्होंने वहाँ चिन्ह देखा था, परंतु उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर उसे सीधा अंदर लाया और उसे सीधा फिरौन के महल में रखा, और फिरौन को उसे पालने दिया और उसे सारी शिक्षा दी जो कि दी जा सकती थी, कि दिखाए वो कैसे कामों को दिखाता है, और उसे पीछे रेगिस्तान में ले गया। उसे सब भूल जाने दो। फिरौन उसे प्रशिक्षित कर रहा था, परमेश्वर उसे शिक्षित कर रहा था। फिरौन ने उसे प्रशिक्षित करने में 40 वर्ष लगाए, परमेश्वर ने शिक्षित करने में 40 वर्ष लगाए। उसे इस सब के विषय में भूल जाने दो। मनुष्य का प्रशिक्षण और परमेश्वर का प्रशिक्षण। फिरौन एक पुत्र को, एक अगुआ, राजनीतिज्ञ, एक लड़ाका, युद्ध करने वाला होने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था, उस अगले फिरौन होने के लिए जो मिस्र को ऊंचे स्थानों पर रख सके और सारे राष्ट्रों को दबाकर और उनसे फिरौन के लिए कर वसूले। परंतु परमेश्वर उसे पीछे रेगिस्तान में ले गया और उसमें से सब कुछ बाहर निकाल दिया, और उस जलती झाड़ी के पास 5 मिनट में दिखा दिया कि वो जीवित परमेश्वर था। उसने उसके अंदर से सारा भय निकाल दिया और उसे तैयार कर दिया। वो एक चिन्ह था। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें, और जब इज़राइल इतनी परेशानी वाली स्थिति में आ गया कि वे और आगे नहीं बढ़ सके, उनका समय पूरा हो गया था और उनका भार उनके सोचने से अधिक हो गया था, तब वे प्रार्थना करने लगे। और जब लोगों ने प्रार्थना करना आरंभ किया तब परमेश्वर ने सुनना आरंभ किया। ये परमेश्वर के वचन को पूरा होने का समय हो गया था। और इसलिए जब अमराम और योकेबेद ने देखा कि ये समय परमेश्वर के वचन के पूरा होने का समय था, वे परमेश्वर से प्रार्थना करने को गए। और प्रायः वे प्रार्थना करते हैं जो बोझ रखते हैं, वो जिसके पास कुछ होता है। ये वे होते हैं जो ऐसा करने के लिए परमेश्वर के ठहराए हुए होते हैं। इस प्रातः हम नाश्ते पर बातें कर रहे थे जबकि हम जल्दी जल्दी टोस्ट खा रहे थे और आदि आदि कि आराधनालय में पहुँचे। वहाँ किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहा गया जो यहाँ से दूर है। वो कैंसर से चंगा होने के पश्चात फिर से सिगरेट पीने लगा। मैंने कहा, कितना खेद का विषय है। इसलिए तब एक बोल पड़ा और कहा, ये बहुत ही भयानक बात है कि यहाँ से हटकर चला जाए सिगरेट पिए। मैंने कहा, मैं ये जानता हूँ क्योंकि ये शैतान है। और मैंने कहा, ये शैतान है। और मैंने कहा, और आप इसे रोक नहीं सकते जब तक कि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर ना हो। मैं अपने जीवन के आरंभ में दो लोगों को जानता हूँ, दोनों परमेश्वर के जन बनना चाहते थे। उनमें से एक, जैसे ही मैं उसकी अगुवाई करके उसे मसीह के पास ले गया, उसने सिगरेट सुलगाई। वो एक दिन में 5 या 6 डिब्बी पीता था। वो आरंभ करता, एक से दूसरी जलाता, पूरे दिन तक एक रहती थी। और उसने दूसरी सिगरेट जलाने का यत्न किया और किसी चीज ने उसे ये नहीं करने दिया। वो स्टोव के पास गया ये ना जानते हुए कि पवित्र वचन इन बातों को दोषी ठहराता है, और स्टोव जलाया और डिब्बी को स्टोव में डाल दिया, और ये तय हो गया। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो मसीही बनना चाहता था और अपनी पूरी कोशिश की, वो प्रभु के सामने रोया। उसने ये दो तीन सप्ताह तक के लिए छोड़ दी और जब उस स्थिति में अपने आपे में आया वो सनकी हो गया। और जब वो अपने आपे में आया तो उसने स्वयं को पीछे आंगन में अपने सिर को टीन से पीटते हुए पाया। जल्दी से दौड़कर घर में गया और सिगरेट लेकर एक के बाद दूसरी पी। उस शाम को जब वो घर छोड़ने वाला था, एक के बाद दूसरी। देखिए, एक बुलाया हुआ था, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता ही उसे अपने पास न खींच ले, और सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। चेतावनी का क्या अर्थ होता है? ये एक के लिए जीवन है, उसने इसे देखा। जब तक परमेश्वर ही प्रकट न करे आप देख नहीं सकते। ये बुद्धिमानों और समझदारों की दृष्टि से छिपा है और बालकों पर जो सीखने वाले होंगे प्रकट करेगा। ये ठीक बात है। अमराम और योकेबेद की ये वो समय था, समय समीप था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जबकि मैं इस विषय में बोल रहा हूँ, वो नहीं जो चाहता है यानी वो जो दौड़ता है, ये परमेश्वर है जो अनुग्रह दर्शाता है। ये ठीक बात है, ये परमेश्वर है। इसलिए आज ओ ये गहराई से बैठ जाए, यदि आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपने स्वयं को संसार की बातों से अलग कर लिया है और परमेश्वर की महिमामय सामर्थ्य ने आपका उन बातों से पवित्रकरण कर दिया है, तो आपको संसार के सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति होना चाहिए। लाखों लोग थे जो इसे करते यदि वे इसे कर सकते थे, परंतु वे नहीं कर सकते। ये उनके लिए नहीं है कि इसे पाएं। ये दिन है जब एक कलीसिया बाहर बुलाई गई है, अलग की गई है। जो ये हुआ करता था ये उससे भिन्न है। जी हाँ, जब लोग प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, जब इसराइल ने एक भविष्यद्वक्ता के लिए प्रार्थना करना आरंभ की, परमेश्वर के पास भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर के पास सारे समय भविष्यद्वक्ता था, क्योंकि परमेश्वर सदा उनके आगे आगे चलता था। उसके पास मनुष्य तैयार था, परंतु वो लोगों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि प्रार्थना करने जाएं। लोगों को ये चाहना चाहिए। कितना प्रतीक है, आज मैं कह सकता हूँ। आज हमें किसकी आवश्यकता है? एक बेदारी लाने वाले की नहीं। ये कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो किसी बड़ी संस्था के साथ हो, जो सारे झुंडों को एक साथ संस्थागत कर ले। आज की क्या आवश्यकता है? एक भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर के पास से संदेश के साथ भेजा गया हो, जो संसार को दोषी ठहराए। परमेश्वर के पास व्यक्ति हो सकता है यदि लोग इसके लिए तैयार रहें। आप जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। संभव है वो संसार में कहीं हो, परंतु लोगों को ये चाहना चाहिए। परमेश्वर आपके गले नहीं मरता, आपकी ये इच्छा होनी चाहिए। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये ठीक बात है। मूसा के पहचान लिए जाने के पश्चात, बल्कि लोगों के, वे ये जान गए कि उन्हें एक अगुवे की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ किया कि उनके पास एक अगुवा भेजे, यानी किसी को कि उन्हें बाहर निकाल लाए। और उसने उनके पास एक मनुष्य को भेजा, एक भविष्यद्वक्ता को, वो उसका चिन्ह था। अब यदि ये मनुष्य भविष्यद्वक्ता न होता, यदि वो खड़ा होता और कहता मैं सेना का एक प्रतिभा हूँ, इसराइल के पास उस मनुष्य पर अविश्वास का अधिकार था, क्योंकि परमेश्वर हर कालों में बिना रुके भविष्यद्वक्ता को भेजता है। बाइबल में बताएं कि कभी ऐसा था। हमेशा एक भविष्यद्वक्ता है जिसे यहोवा यूं कहता है के साथ भेजा गया। यहाँ तक कि दाऊद स्वयं एक महान सेना की प्रतिभा था जो कि कभी इसराइल के पास रहा हो, और तो भी दाऊद भविष्यद्वक्ता था। निश्चय ही वो था, वो भविष्यद्वक्ता दाऊद था। वो लोगों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि उनके हृदय में इस भविष्यद्वक्ता को सुनने के लिए इच्छा हो, जिसे कि वो भेजने पर था। ठीक है, वहाँ पर एक मनुष्य था जिसने कहा कि उन्होंने कर दिया जो कि नहीं किया गया था, और बाद में ये सिद्ध हो गया कि वे ठीक नहीं थे। उन्होंने बस वो कर दिया और वो भावनाओं, और बाइबल ने कहा कि उनके साथ एक मिलीजुली भीड़ चली गई। इसने क्या किया? जंगल में परेशानी उत्पन्न कर दी। और हर बार जब घटना घटी, ओ मेरी इच्छा है कि मैं इसे यहाँ समझा दूँ। हर बार जब परमेश्वर किसी चीज को भेजता है तो वहाँ कुछ अशिष्ट इसकी शारीरिक नकल करने वाले हर बार इसके साथ चलते हैं, हमेशा कुछ इसका बनावटी विश्वास, और ये लोगों के साथ भली प्रकार से समायोजित हो जाता है। परंतु परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता यहोवा यूं कहता है कि साथ स्थिर रहता है, वो कभी भी पवित्र वचन से नहीं हटेगा यदि वो परमेश्वर का भेजा हुआ है। मूसा ठीक वचन पर बना रहा। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें बाहर ले आऊंगा। उसने मूसा से कहा मैंने तुझे कार्य करने के लिए भेजा है। मूसा के पास एक अनुभव था, वो परमेश्वर से भेंट कर चुका था, उसके पास प्रभु का वचन था। कारण परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता है क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन होता है। प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है, और यदि उसके पास प्रभु का वचन नहीं है तो फिर वो भविष्यवक्ता नहीं है। वहाँ बहुत सारे बुद्धि से नकल करने वाले ये कहने का यत्न करते हैं कि सारे युगों से होते हुए वे भविष्यवक्ता हैं, परंतु वे सदैव प्रभु के वचन से हट जाते हैं। परंतु एक सच्चा भविष्यवक्ता ठीक वचन पर बना रहता है। अब इस अवतरण को ना भूलें। एक सच्चा भविष्यवक्ता यहोवा यूं कहता है कि साथ स्थिर रहता है। यीशु ने हमें चेता दिया कि अंतिम दिनों में क्या घटित होगा, परंतु एक सच्चा दास, सच्चा भविष्यवक्ता कभी यहोवा यूं कहता है कि साथ स्थिर रहने में कभी नहीं चूकता। मूसा प्रभु के साथ स्थिर रहा, वो चिन्ह था, वो इसराइल के लिए चिन्ह था कि उनके छुटकारे का दिन समीप था, और वो मिस्र के लिए चिन्ह था कि उनके अंत का दिन समीप आ गया, क्योंकि वे बाद में मृत सागर में डूब मरे, फिरौन की समस्त सेना। वे अपने सेना की सामर्थ्य के अंत में थे, और भविष्यवक्ता राष्ट्र के अंत होने का एक चिन्ह था। इस पर विचार करें कि परमेश्वर कितना महान है और कितनी सादगी में वो कार्य करता है। निश्चय ही यदि एक अनपढ़ इसे समझ सकता है तो शिक्षित को भी इसे समझना चाहिए। यदि एक गुलाम मिस्र के कीचड़ में खड़े हुए ये समझ सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवक्ता है और घड़ी पास ही थी, तो फिर फिरौन के महल में कितना अधिक मालूम हो जाना चाहिए था। परंतु इस प्रकार के लोग ये नहीं जानते। इस प्रकार के लोग सदा इससे चूक जाते हैं। और वहाँ से निकलते हुए मूसा उस खिड़की में खड़े होकर उन इसराइल के बालकों को देख रहा है। इसराइल को फिरौन के लिए वे गुलाम और कुत्ते थे, मूसा के लिए परमेश्वर के चुने हुए। बाइबल ने कहा मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को स्वयं चुना, पाप के आनंद से अधिक सम्मानित धन समझा, क्योंकि उसकी दृष्टि इनाम पाने की ओर थी। मूसा जानता था कि वे गारा बनाने वाले नहीं हैं, वे प्रतिज्ञा पाए हुए लोग हैं। सैम को भी वो जानता था कि वो कौन था, वो उन्हें नहीं बता सकता था, उन्हें उसे स्वयं ही पहचानना था। वो स्वयं को जानता था कि उसका कार्य क्या था करने के लिए। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे इस उद्देश्य के लिए पाला पोसा है, परंतु वो उन्हें नहीं बता सकता था। और जब तक वे इस बात के लिए अंधे रहे, उसने कभी भी स्वयं को उन पर खुल्लम खुल्ला प्रकट नहीं किया। जब तक वे इसे पहचान नहीं गए, तब उन्होंने वो चिन्ह देखा और वे इसे जान गए। उसने कहा मैं इसराइल को एक चिन्ह दूंगा, इस छड़ी को ले, इसे सर्प में बदल। यदि वे इसे नहीं सुनेंगे तो अपना हाथ अपनी छाती में रखना, उसे बाहर निकालना, स्वयं को कोड़ से चंगा करना, तब वे इसका विश्वास करेंगे। और तब यदि वे इसे ना सुने तो फिर वहाँ नील में से थोड़ा सा पानी लेना और सूखी भूमि पर गिरा देना, और सारा जल लहू बन जाएगा। ये एक राष्ट्रीय चिन्ह था, लोग इसका विश्वास करेंगे। जब इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, इसका विश्वास करेंगे जब वे परमेश्वर के चिन्ह को घटित होते देखते हैं। परंतु राष्ट्र के पास कुछ भिन्न होना था, इसलिए उसने ये सारे चिन्ह दिए। परमेश्वर ने एक मनुष्य को प्रयोग किया, एक नम्र मनुष्य को, एक भविष्यवक्ता। वो उस राष्ट्र की स्थिति का एक अंतिम चिन्ह है। परमेश्वर हमारे पास दूसरा वाला भेज, हमारे लिए दूसरा उठा। यदि परमेश्वर के लोग ऐसे के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो वो उसे उठा खड़ा करेगा। ये लोग हैं जिन्हें ये बोझ उठाना है, उन्हें जागना ही है, उन्हें अनुभव करना ही है, उन्हें जानना है कि हम किस दिन में जीवित हैं और हमारे आसपास क्या स्थिति है इसके पहले कि वे कभी जागें। आप वैसे ही जीवन व्यतीत करते रहें जैसे सदा किया। अगले वर्ष नया घर बनाना है, मुझे जॉन से अच्छी कार लेनी है, मुझे ये करना है, ओ इस पर बहुत कुछ। जब आप अनुभव करते हैं कोई मतलब नहीं, ये सब ठीक है, परंतु भाई आपको अनुभव करना चाहिए कि ये सब सामान सड़ जाएगा। यीशु ने कहा उससे मत डरो जो शरीर को नष्ट करता है, रूस का परमाणु बम, उससे मत डरो जो शरीर को कुछ ही मिनटों में ज्वालामुखी की राख बना देगा, परंतु उससे डरो जो शरीर को ऐसा बना देगा और प्राण को नरक में डाल देगा। यही बात है, जैसे कि मैं वहाँ अस्पताल में डॉक्टर से बात कर रहा था जब मेरी माँ वहाँ पर थी। वो बात कर रहा था कि कैसे महान विज्ञान को शरीर के बहुत से मामलों पर कार्य करना है और उसमें दवा का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये किसी विशेष जीवाणु को मारता है और जीवन के जीवाणु को बचाता है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, और मैंने उसे थोड़ी देर तक सुना जब तक मैंने ये कहा, डॉक्टर ये अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, ये बहुत अच्छा है, मैं निश्चय ही इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परंतु देखिए, आप पृथ्वी की सृष्टि की कुछ चीजों को जानने के यत्न के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हो, परंतु ये क्यों नहीं किसी समय सोचते हो कि ये किसने इसकी सृष्टि की है, इसे किसने बनाया, इसकी रूपरेखा बनाने वाला कौन है। परमेश्वर इसकी रूपरेखा बनाने वाला है, उस सृष्टि से, वो सृष्टिकर्ता कितना महान है जिसने इसे बनाया। हम सृष्टि पर इतना जोर क्यों देते हैं जबकि हम सृष्टिकर्ता के विषय में नहीं सोचते जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और शरीर और जीवन, और जब वो चाहे उसे नष्ट कर सकता है क्योंकि ये उसका है। मनुष्य का शरीर ये कार्य करने के लिए बहुत अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आंख को बदल देते हैं और उन छोटी छोटी बारीक नाड़ियों को लेकर और मनुष्यों के गोलक में से आंख निकालकर और उसे दूसरे मनुष्य के गोलक में लगा देते हैं और वो मनुष्य उस आंख से देख सकता है। ये शानदार बात है। ऐसा हुआ करता था कि एक माँ जब एक बालक को जन्म देने वाली हुआ करती थी और बालक जन्म नहीं ले सक पाता था, वो इस प्रकार से बनी होती थी कि बालक जन्म नहीं ले सकता था, माँ और बालक दोनों मर जाते थे, वो ठीक था। क्या आपने अक्सर ये सुना है कभी? ये भिन्न था, हो सकता है कभी नहीं, परंतु आज जब एक माँ उस स्थिति में होती है वे उस माँ को ले सकते हैं, और यदि माँ बच्चा जन्मने के समीप हो वे उस माँ को एक कमरे में ले जाकर उसे थोड़ी देर बेहोशी की दवा देते हैं और बालक को निकाल लेते हैं, एक साधारण एक जन बालक को निकाल लेते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। मुझे एक प्रणाली बताएं, नगर की इस जल प्रणाली में आप एक बड़ी टोंटी बंद कर दें और देखिए क्या होता है, उस पहली टोंटी में वो इसे फाड़ देगी, परंतु तो भी हम एक टांग काट सकते हैं, हाथ काट सकते हैं, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के द्वारा वो लहू को किसी और मार्ग से ले जाता है दूसरी बार और किसी और मार्ग से निकाल कर ले जाता है ताकि उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। ये कौन कर सकता है मुझे बताएं? एक धमनी को काटें, यहाँ कहीं से मूल धमनी को काटें, पानी में जब ये कपाट से दाब डाल रहा हो ये क्या करेगा? एक बार करके देखें और देखें क्या होता है। उसके निकलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसे वापस कपाट की ओर बहना है। यदि परमेश्वर ने इसका दूसरा मार्ग नहीं बनाया कि लहू वापस चला जाए स्वयं से और हृदय को एक पीछे की ओर झटका मारकर और आप मर जाएंगे। हर बार जब आपकी उंगली कटती है तो ये आपके लिए तुरंत मृत्यु होती। हर बार आप कहीं से काटते हैं जो धमनी को खोल देता है या कुछ और, तो ये तुरंत मृत्यु होती। अपनी उंगली काटे और आप मर जाते, बस ये वापस आपके हृदय में फिर से चला जाता और ये आपको मार डालता। परंतु परमेश्वर, अब हम सोचते हैं कि ये आश्चर्यजनक है, हम सोचते हैं ये आश्चर्यजनक है और हम इसकी सराहना करते हैं कि कैसे विज्ञान ने वे उन धमनियों को बांध सकते हैं और लहू को बहने से रोक सकते हैं, ये सब अच्छा है, परंतु वो कौन है जिसने इसका खाका बनाया है? देखिए, हम चारों ओर सृष्टि को देखते हैं और इसके बनाने वाले को भूल जाते हैं। देखा, हम प्रकृति की वस्तुओं को देख रहे हैं और सब भूल जाते हैं, आत्मिक बातें हम यही करते हैं। अब वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं, उसका वचन रखते हैं, यही कारण है कि लोग उनका विश्वास करते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसने पीछे उत्पत्ति में कहा, बहुत सी बार निर्गमन में, सब में, यदि कोई तुम में से जो कोई आत्मिक या एक भविष्यद्वक्ता हो, अब हम इन बातों को कैसे जान पाएंगे? उसने कहा, जब वो कुछ कहता है और वो घटित हो जाता है तो इसका विश्वास करना, समझे? ये एक चिन्ह है। इसलिए वो अपना वचन देता है, अगुओं को नहीं, तानाशाह को नहीं, परंतु भविष्यद्वक्ताओं को। क्रुश्चेव संसार के लिए चिन्ह नहीं है, नहीं श्रीमान। हिटलर संसार के लिए चिन्ह नहीं था। किसी स्थान में परमेश्वर के पास एक नम्र भविष्यद्वक्ता उस घड़ी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वो एक चिन्ह है, वो एक चिन्ह है जो संसार को दोषी ठहराएगा और कलीसिया को बचाएगा। भविष्यद्वक्ता एलिया अपने दिनों में एक चिन्ह था। वो एलिया भविष्यद्वक्ता, वो परमेश्वर के वचन का चिन्ह था। मिस्र के लिए न्याय, इज़राइल के लिए छुटकारा, यदि वे उसका विश्वास करना चाहते थे। एलिया के उस पापमय दिन में जब सारे इज़राइली परमेश्वर को छोड़कर चले गए, वे पाप में वापस चले गए, वे आज्ञा को भूल गए, वे भूल गए कि अगुवाई परमेश्वर के द्वारा है और वो महान यहोवा जिसने लाल सागर को खोल दिया और उन्हें मिस्र से बाहर निकाल लाया और मूसा के समान उनके मध्य में एक महान भविष्यद्वक्ता था। वे ये भूल गए होंगे, हम ये भूल जाते हैं। तुम मेथोडिस्ट हो, जॉन वेस्ली को भूल गए हो। तुम लूथरन हो, तुम मार्टिन लूथर को भूल गए हो। तुम बैप्टिस्ट हो, तुम जॉन स्मिथ को भूल गए हो। हम में से बहुत से चार्ल्स फिनी, इन सबसे बड़ा था, भूल गए। ये कहा गया कि फिनी के 97% मत परिवर्तित लोग स्थिर रहे, मूडी के 75% लोग एक वर्ष में वापस चले गए, और वेस्ली के पवित्रताई का झुंड ये निरंतर पिछड़ रहा है। परंतु फिनी के पास 97% थे। छोटा दुबला पतला गंजे सिर वाला प्रचार मंच पर गया और भक्तगणों की सभा को इस प्रकार देखा और लोग बेहोश हो जाते थे, क्योंकि वो एक दिन झाड़ियों में रहा जब तक पवित्र आत्मा ने उसे पकड़ ना लिया। यही बात थी, वो लगभग 200 वर्ष पहले अंत के लिए चिन्ह था, उस महान बेदारी के लिए जो वेस्ली और उनके पास थी और न्याय आ रहा था। वो एक चिन्ह था, वो पाप भरी पीढ़ी। और एलिया किस प्रकार से निडर और मजबूती से स्वयं में खड़ा रह सकता था? आमीन। उसके साथ कोई नहीं था, परंतु वो परमेश्वर का चिन्ह था। वे बाकी याजकगण सब आहाब के साथ चले गए थे। उस आधुनिकता में वे उस पीढ़ी में आधुनिक हो गए थे, परंतु आहाब कितना बूढ़ा, यानी बूढ़ा आहाब, उसकी सारी महान उपलब्धियां और उन सब कलीसियाओं को कैथोलिक वाद नहीं, परंतु लगभग वैसी ही बात, मूर्ति पूजा ऐसे स्थान पर ले आया जहां वे उथल पुथल लल्लो चप्पो में थे, कुछ इस प्रकार से आराधना कर सकते थे और बस स्वतंत्रता, आप जो चाहे करें, और इस प्रकार की स्थिति में आ गए थे। और कैसे वो एलिया वहां निडर होकर खड़ा हुआ, उस यहोवा यूं कहता है कि साथ था। ओ परमेश्वर, हमें इस प्रकार का मनुष्य दे। वो इजाबेल को कहने से नहीं डरता था, उसकी स्थिति के विषय में वो आहाब से डरा नहीं था, वो डरता नहीं था कि वो गलती कर गया। वो निडरता के साथ खड़ा हुआ और आहाब के सामने गया और कहा, जब तक मैं नहीं कहूंगा, ओस भी नहीं गिरेगी। आमीन। वो क्या था? उस पाप भरी पीढ़ी का एक चिन्ह। क्या इज़राइल ने उसे देखा? नहीं, वे उस पर हंसे, उसका उपहास उड़ाया। उसने भविष्यवाणी की कि अकाल पड़ेगा, कि वहां संकट होगा, भूख, भुखमरी, और निडर होकर भविष्यवाणी की, स्वयं को यहोवा यूं कहता है कि साथ खड़ा किया। कहा, प्रभु, इन्होंने सब सच्चों को मार डाला, उन्होंने सबको मार डाला, केवल मैं ही एक बचा हूं जो तेरे वचन के साथ खड़ा हूं। परेशानी किस बात की थी? परमेश्वर का वचन। एलिया वचन के साथ स्थिर रहना चाहता था, वो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता था। दूसरे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, ओ, इससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता, यहोवा परवाह नहीं करता, समझे? यहोवा परवाह करता है, ये उसका वचन ही होना चाहिए। और एलिया निडरता से वचन पर खड़ा रहा, उस यहोवा यूं कहता है के साथ। एक दिन परमेश्वर ने उसे छोटा सा भेद बताया, उसने कहा, मेरे पास 7,000 हैं, एलिया तू वहाँ गवाही के लिए है। उनके पास इतना साहस नहीं है कि बाहर आकर इसका दावा करें। वे आसपास झाड़ियों में छिपे हुए हैं, परंतु तो भी उनके हृदय में वे मेरे दास हैं, उन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके हैं। वे इसे करने के लिए डरते हैं, परंतु मैं तुझे एक चिन्ह दे रहा हूँ और तू एक चिन्ह है। वहाँ खड़ा हो और मेरे वचन पर खड़ा हो, मैं तेरी रक्षा करूँगा। उन्हें एक चिन्ह दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पास कुछ ऐसा भेज जो परमेश्वर के वचन का एक चिन्ह हो और हर प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की है उस व्यक्ति में समर्थित हो, क्योंकि वो एक चिन्ह है, एक भुला दिया गया चिन्ह। ओ, उन्होंने सोचा क्योंकि आहाब एक महान राजा था और सारे राष्ट्र उससे डरते थे, यही पर्याप्त था। परंतु एलिया वचन का चिन्ह था, ये सच्चा भविष्यवक्ता था, वचन का एक चिन्ह। इसलिए जबकि वो वचन का चिन्ह होने के कारण उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, वो उनके किसी काम का ना था। वो विधवा के लिए चिन्ह था जब परमेश्वर ने उसे कार्मेल पर्वत पर से भेजा। वो उस करीत के नाले पर से कौओं के खाना खिलाए जाने के पश्चात और वो सोता सूख गया। वो इस विधवा के घर पहुंचा, प्रचारक के जाने के लिए क्या ही स्थान, परंतु वो वहां गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां जाने को कहा। परंतु वो वहां गया, कहा मैंने उसे आज्ञा दी है कि तुझे खिलाए। उसे महिला को एक चिन्ह होना चाहिए था, उसको एक चिन्ह होना चाहिए था जब वो वहाँ बाहर थी। एक रोटी के लिए पर्याप्त आटा था और उसका लड़का इसे खांपा, कुप्पी में पर्याप्त तेल, थोड़ा सा कुछ उसके साथ चले। उसने कहा मैं यहाँ बाहर लकड़ी बीनने आई हूँ। उस भयानक गर्म तपती सुबह जब एक सफेद बालों से भरे मुंह वाला एक व्यक्ति उसके पीछे सफेद बाल लटक रहे थे वहाँ पहुँचा और उसका गंजा सिर चमक रहा था, दरवाजे पर झुका, बोला मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ला, और कहा इसके अलावा अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा लेती या मेरे लिए एक रोटी। उसने कहा मेरे पास पर्याप्त खाना नहीं है, मैं यहाँ दो लकड़ियाँ बीनने आई हूँ कि अपने बेटे के लिए छोटी सी रोटी बनाऊं। मेरे पास केवल इतना है कि उसके और अपने लिए एक पकाऊं और हम खाकर और मर जाएं। उसने कहा डर मत, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, यही मनुष्य है जिसकी हमें आवश्यकता है। हाँ नहीं क्यों बहन, ये हो सकता है, ये घटित हो सकता है, मैं नहीं जानता। नहीं नहीं, पक्का था। यहोवा यूं कहता है कि बर्तन खाली ना होगा, ना ही कुप्पी का तेल घटेगा जब तक परमेश्वर पृथ्वी पर वर्षा ना भेजे। आमीन। आप यही हैं। ये उसके लिए पर्याप्त चिन्ह हो जाना चाहिए था। वो आज कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। तत्पश्चात एलिया उसके पास कुछ थोड़े समय रुका। उसका एक छोटा लड़का था, वो बीमार हो गया। उसकी बीमारी बहुत खराब थी, यहाँ तक कि उसमें सांस भी ना रहा, वो मर गया। तब उसने क्या किया? कलीसिया पहले ही उन चिन्हों को देख चुकी है, परंतु क्या, जैसे ही कोई छोटी विपत्ति आती है तुरंत वो इसके लिए कलीसिया पर दोष लगाते हैं। वो एलिया पर दोष लगाना चाहती थी। उसने कहा तू परमेश्वर का जन, अब तू क्या यहाँ मुझे मेरे पापों को स्मरण दिलाने आया है और मेरे पुत्र का जीवन लेता है? एलिया ने पुत्र को लिया और उसे अपनी अटारी पर ले गया जहाँ वो सोता था, उसे अपनी खाट पर लिटा दिया और स्वयं को उस पर लिटा दिया और कहा प्रभु परमेश्वर हालेलुया, इस लड़के का प्राण वापस भेज दे। और लड़का जाग गया, वो उसे वापस ले गया और उस स्त्री ने उस बालक को देखा और तब उसे देखा, तब वो जान गई कि उसमें कुछ है। उसने कहा इसके द्वारा मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन तेरे मुंह में है। आमीन। वो उस विधवा के लिए चिन्ह था जब उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा जो जीवित रखता है और मार सकता है, उसके मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। उसने कहा इसके द्वारा मैं ये जानती हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। वो ये जान गई। आज राष्ट्र उस पर ऐसे हंसेंगे जैसे उन्होंने पहले किया, वे इसका विश्वास नहीं करेंगे, परंतु वो स्त्री अंतर को जान गई। वहाँ ये चिन्ह था, जैसे कि वो एक चिन्ह था कि मरे हुए बालक को फिर से जीवित कर दिया। वे भविष्यद्वक्ता सदैव परमेश्वर का चिन्ह रहे हैं। जब एलिया ने शक्ति परीक्षण के लिए ललकार दी, कहा यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, यदि बाल ईश्वर है तो उसकी सेवा करो, क्या आज वो दिन एलिया के लिए आश्चर्यजनक दिन नहीं हो सकता? यदि राजनीति ईश्वर है तो उसकी सेवा करो। हमें राजनीति में क्या मिला? हमने क्या किया? हमें सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं मिला। हमें कुछ नहीं मिला, परंतु हमने लगभग सारे मित्र खो दिए जो हमें राष्ट्रों के द्वारा मिले थे। यहाँ पिछले सप्ताह दो या तीन अधिक राष्ट्र साम्यवाद के लिए खो दिए। हम लोगों पर कर लगा रहे हैं और उनके पैसे लेकर उन लोगों को खिलाने के लिए भेज रहे हैं, और जैसे ही वो बन जाते हैं साम्यवाद की ओर चले जाते हैं। ये ढोंग है, ये ठीक बात है। हम मसीही कहलाते हैं, हम मसीहों के समान बने, तब खिलाने के द्वारा नहीं। और ऐसी बातें इसमें बहुत ही मामूली है। एक साधारण अच्छे हृदय का व्यक्ति ये करेगा। ये धर्म है, ये उद्धार नहीं। बहुत से लोग धर्म और उद्धार को मिला देते हैं। धर्म यह है कि विधवाओं और निर्धनों और आदि आदि को खिलाएं, परंतु उद्धार नया जन्म है, फिर से जन्म लेना, ये भिन्न है। धर्म मुसलमान एक धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। अब उस कारमेल पर्वत पर उस दिन जब उसने शक्ति परीक्षण के लिए ललकारा और उसने अहाब को बुलाया, हजारों याजक जो अपने नामधारी मंदिर से संबंधित थे, उसने उन्हें कारमेल पर्वत पर बुलाया, कहा यहाँ आओ, मुझसे यहाँ आकर मिलो, मैं संपूर्ण झुंड को खड़ा करूंगा। उसने क्या किया? उसके पास यहोवा यूं कहता है था, वो भयभीत नहीं था। उसने कहा बैल चढ़ाओ और बाल को बुलाओ, और जो परमेश्वर आग से उत्तर दे वो परमेश्वर हो। इसलिए पूरे दिन प्रातः से लेकर दोपहर बाद तक वे वेदी पर कूदते रहे। उन्होंने स्वयं को चीरा, वे चिल्लाए, उन्होंने शोर मचाया। एलिया इधर उधर घुमा, कहा थोड़ा जोर से चिल्लाओ, हो सकता है वो मछली पकड़ने गया हो या कुछ और बाहर शिकार पर गया हो या ऐसे ही कुछ, क्योंकि उसके पास यहोवा यूं कहता है था। वो संतुष्ट था, उसके पास परमेश्वर का वचन था। भाई बहनों, किसी व्यक्ति को और क्या चाहिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा से अधिक? परमेश्वर ने कहा वो इसे करेगा। जैसे कि अब्राहम, उसने परमेश्वर को योग्य जाना कि जो उसने कहा वो उसे करने के योग्य है। वो जानता था कि परमेश्वर ये कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। इसलिए उसने उन्हें वहाँ ऊपर बुलाया, और इस प्रकार उन्होंने स्वयं को काटा और शोर मचाया और चिल्लाए पूरे दिन सांझ के बलि के समय तक। तब एलिया, देखिए उसने कैसे किया। पहली बात जो उसने की, 12 पत्थरों को एक साथ करने के लिए लुढ़काया। परमेश्वर बटा हुआ नहीं है। नामधारी वर्ग कलीसियाओं को बांटते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं। एक ने कहा क्या तुम एक मसीही हो? मैं बैप्टिस्ट हूँ। देखिए, ये इससे अधिक नहीं कि वो एक सुअर है। कहते हैं मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। देखिए, फिर से ये बात परमेश्वर के लिए एक सुअर से अधिक नहीं। मैं कहता हूँ क्या आप एक मसीही हैं? मसीही होने के लिए आपको मसीह के समान होना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ देवत्व आप में वास कर रहा है, जैसे कि पेंतेकोस्त के दिन उतरा। कोई आवेश नहीं, परंतु मेरा मूल पेंतेकोस्तल, समझे? ठीक है, मैं पेंतेकोस्तल हूँ, मैं वननेस हूँ, मैं ट्रिनिटी, मैं, ओ प्रभु, ये इससे अधिक और कुछ नहीं कि आप कह रहे हैं कि आप कुछ थे। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं, ये बांटता है। उन याजकों के मध्य में यही हुआ, परंतु एलिया ने ये 12 पत्थर लुढ़का कर इसलिए जमा किए कि दर्शाए परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है, उन सब के ऊपर है। उन्हें लुढ़का कर एक साथ जमा किया। इसलिए जब उसने उन्हें एक साथ जमा किया, इस प्रकार से उसने बैल मारा और वेदी के ऊपर की लकड़ियों को ऊपर रख दिया। उसने कहा अब इस बात में अस्वस्थ होने के लिए कि इसमें कोई गबड़ नहीं है, मेरे पास पानी के 12 घड़े लाओ। और वो वास्तव में लकड़ी पानी को सोखती है। ओ हालेलुया, वो दर्शाना चाहता था कि परमेश्वर परमेश्वर था। क्यों? उसके पास यहोवा यूं कहता है था, वो एक भविष्यवक्ता था, उसके पास परमेश्वर का वचन था। इसलिए कि यदि उस दिन वे कहते हैं कि वे आपको कलीसिया से बाहर कर देंगे, वे ये कर देंगे, वो कर देंगे, यदि तुमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और इस प्रकार की सब विभिन्न बातें अर्थहीन है, ये यहोवा यूं कहता है। उस रात्रि एक प्रिय व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था। वो आया और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। बोला, भाई ब्रणम, कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि आप थोड़ा सा इस छोटे से मामले पर समझौता कर लें जिसके लिए आप बातें कर रहे हैं। मैंने कहा क्या? कहा ये सब बपतिस्मा, कहा शिकागो की कलीसियाएं और सब आसपास के आपको बहुत चाहते हैं, परंतु वे डरते हैं कि आप इसका उल्लेख करोगे। मैंने कहा निश्चय ही मैं इसका उल्लेख करूंगा, मैं इसका उल्लेख करूंगा। वे कहते हैं भाई केवल यही एक बात है जो उनके पास आपके विरोध में है। मैंने कहा तो फिर वो मेरे विरोध में नहीं है, मैं नहीं हूँ जिसने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा। मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूँ कि आकर सिद्ध करें कि ये गलत है, समझे? वाह, अच्छा, आप देखिए, आपको सहमत होना चाहिए और संगति बनानी चाहिए। यही बात थी कि वे चाहते थे कि ये करें। वहाँ आहाब परमेश्वर समझौता नहीं करता। नहीं श्रीमान, वो समझौता नहीं करता। उसने कहा अब भाई ब्रैनम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा, हम सब प्रभु के स्वर्गदूत पर विश्वास करते हैं, क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आपको ये बताया? मैंने कहा, मैं चिंता नहीं करता कि प्रभु का स्वर्गदूत क्या कहता है। यदि ये प्रभु का स्वर्गदूत है तो वो यही कहेगा, परंतु यदि उसने कोई और विरोधात्मक बात कही है तो वो प्रभु का स्वर्गदूत नहीं है। मैंने कहा, अनपेक्ष स्वर्गदूत या कोई किसी ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, यदि स्वर्गदूत स्वर्ग से तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करे वो श्रापित ठहरे। स्वर्गदूतों और हर कोई यहाँ कोई शारीरिक फूल कर दूतों के विषय में कुछ कहे, और जोसेफ स्मिथ, ब्रिंगम यंग और विभिन्न पंथ के एडवेंटिस्टों के और कुछ भी, वे इस प्रकार की सब चीजों को देखते हैं, परंतु ये सदा वचन के विरुद्ध है। परंतु परमेश्वर अपने वचन का समर्थन करता है, ये उसका वचन है। मैंने कहा, ये प्रभु का वचन है, निश्चय ही सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे उसके द्वारा सिखाया गया था। मैं कभी भी धर्म विद्यालय नहीं गया था या विद्यालय, ये उसके पास से आता है। परंतु मैंने कहा, भले ही ये विरोधात्मक हो, यदि ये उससे विरोधात्मक है मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि ये पहले परमेश्वर का वचन, हर चीज झूठी ठहरे और परमेश्वर का वचन इसके साथ स्थिर रहे। इसलिए एलिया जब वो इसमें से होकर निकला, उसने उन लट्ठों को पानी से तर कर दिया, कुल मिलाकर पानी के 12 मटके ऊपर उलट दिए। वो वहाँ शांति के साथ आगे बढ़ा जैसे बढ़ सकता था। क्यों? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर ने उसे बता दिया था। उसने कहा, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का प्रभु परमेश्वर, आज ये प्रकट हो जाए कि तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, क्योंकि ये यहोवा यूं कहता है, मैंने ये किया है क्योंकि तूने मुझसे ये करने को कहा है, क्योंकि ये तेरे वचन के अनुसार है। अब ये जाना जाए कि तू ही परमेश्वर है। और प्रभु की अग्नि नीचे उतरी, बलि को भस्म कर दिया, गीले लट्ठों, चट्टानों और हर चीज को साफ कर दिया और हर चीज को ले लिया। अब इज़राइल चिल्लाया, 7,000, परमेश्वर ही परमेश्वर है। एलिया वो छोटा सा दिखने में, कितना सुंदर बूढ़ा, कमजोर दिखने वाला, झुर्रीदार, दुबला पतला, वो छोटी छड़ी उसके हाथ में थी, छोटी तेल की कुप्पी उसके एक और लटक रही थी और बकरी के खाल लपेटे हुए था। क्यों? आज वे उसे जेल में डाल देंगे यदि वो इस सड़क पर चले, परंतु वे स्त्रियों को छोटे वस्त्र पहनने देते हैं, परंतु निश्चय ही वे ये नहीं करेंगे, समझे? कोई हो, इसलिए ताकि, परंतु यहाँ वे, वो वहाँ नीचे आता है पर्वत के पार इस घड़ी। अब कार्मेल पर्वत कोई छोटा खाली स्थान रेगिस्तान के मध्य में नहीं है, ये एक बड़ा पर्वत है। दूत वहाँ इस प्रकार भागते हैं, ऊपर तक भागते हैं और वहाँ से समुद्र को देखते हैं, और एलिया और गेहजी चोटी तक ऊपर भागे, और एलिया मुंह के बल गिरा और वहाँ पर अपनी पीठ दक्षिण सूर्य की ओर करके और परमेश्वर को पुकारने लगा। 3 वर्ष और 6 महीने से ओस तक ना गिरी थी। उसने गेहजी से कहा, जाकर देख यदि तुझे कुछ दिख पड़े, समुद्र पर बादल, इस पर्वत पर खड़ा हो और उस ओर देख। बोला, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो वहीं स्थिर रहा। परमेश्वर, यदि इन लोगों ने प्रायश्चित कर लिया है, यदि ये लोग तेरे पास वापस आ गए हैं, यदि ये इस बात के लिए तैयार हों कि सारी अर्थहीन बातों को छोड़कर और तेरे वचन पर वापस आ जाएं, तब तू परमेश्वर है कि अपने वचन का उत्तर दे। यही बात मैं आज कह दूं, इन नामधारी संस्था को लेकर तोड़ दे, इन नामधारी संस्थाओं की भिन्नता को भूल जाएं और लोगों को परमेश्वर के वचन पर वापस आने दे, उस खुदी हुई पंक्ति पर, और मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि परमेश्वर है जो अब भी आग से उत्तर देता है। मैं लोगों से पूछता हूँ, परमेश्वर को पुकारता हूँ कि परमेश्वर, वो एक व्यक्ति को बुलाएगा, लोग भविष्यद्वक्ता के लिए पुकारें, परमेश्वर उसे दृश्य पर ले आएगा। मैं राष्ट्रों को चुनौती देता हूँ कि वो ये करें, अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को पुकारें कि एक छुड़ाने वाला भेज और देखिए क्या होता है। केवल एक बार करें, परमेश्वर उत्तर देगा। परमेश्वर हमेशा उत्तर देता है। मुंह के बल गिरकर कहो, परमेश्वर आज ही ये होने दे। ये लोग एक समय आपके विरुद्ध थे, ये लोग उधर सब प्रकार के उन नामधारी संस्थाओं में बट गए थे, परंतु आज तू स्वयं को सिद्ध कर, तू परमेश्वर है। और लोगों ने कहा बाल को फेंक दो, मैं उन हजारों याजकों को मार डालूंगा। प्रभु वे इस समय अपने मार्ग से अलग हैं, सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, वो छोटी छोटी रुकावटें जिन्होंने हमें अलग कर रखा था। एक मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के साथ आराधना करना चाहेगा, बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल के साथ आना चाहेगा, हृदय की गहराई में सच्चाई, वे ईमानदार 7,000, परंतु वे ये नहीं कर सकते। यदि वे करते हैं तो वे अपनी कलीसियाओं से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उनमें से कुछ चिंता नहीं करते। जो भी हो वे आते हैं, ये ठीक बात है, परंतु उनकी पहले से ठनी हुई सारी अवधारणाओं को टूटने दें और साथ मिलने दें और कहें ये सारे मत्सार भूल जाएंगे और प्रश्नोत्तरी और हर चीज को जो उसमें से पढ़ रहे हैं। आइए प्रभु के वचन पर वापस चलें, तब ध्यान दें कि क्या घटित होता है। परमेश्वर उनके लिए एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा, निश्चय ही वो करेगा, वो इसे लाएगा सीधा उनके पास यदि वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हों। पहले उन्हें प्रार्थना करनी ही है, परमेश्वर प्रतीक्षा करता है। क्या ये अनोखी बात नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि लोगों का उसमें भाग हो। जब यीशु ने पकी कटने वाली फसल की ओर देखा, उसने कहा खेती पक गई है, मजदूर थोड़े हैं, तुम खेत के स्वामी से प्रार्थना करो, ये वो है, तुम उससे प्रार्थना करो, वो मेरी कटनी के लिए मजदूर भेजेगा। ये कुछ भाग आपको करना होगा। परमेश्वर की प्रतीक्षा उसकी कलीसिया के लिए है कि उसे पुकारे, उसने सदा ये किया है। आज परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है लोगों के लिए कि उसके दास को कार्य करने के लिए पुकारें, और दास कार्य नहीं कर सकता जब तक लोग प्रार्थना न करें। इसराइल वहां आश्चर्य कर्मों और चिन्हों में कार्यरत नहीं हो सकता जब तक उन्होंने मुंह के बल गिरकर छुड़ाने वाले के लिए प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर के पास छुड़ाने वाला है। परमेश्वर के पास भविष्यद्वक्ता वहाँ जंगल में था, उसे वहाँ 40 वर्ष तक प्रतीक्षा करवा के रोके रखा कि वे सीधे प्रार्थना में जाएं। परंतु जब वे सीधे प्रार्थना में गए और प्रार्थना करनी आरंभ की, तब परमेश्वर ने छुड़ाने वाला भेजा। परमेश्वर आज भी वैसा ही करेगा यदि लोग केवल एकत्र होकर और प्रार्थना करने लगे। वो उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए चिन्ह था और आहाब के लिए कि वो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। तब वो इसराइल के लिए भी चिन्ह था कि वो आकाश को बंद कर सका या आकाश को खोल सका जब उसने करना चाहा। निश्चय ही वो था। मुझे बताएं, एक जो आकाश को बंद कर सकता है, मुझे दिखाएं, परमेश्वर से अलग होकर कौन आकाश को खोल सकता है? और परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ताओं के साथ है। मिकाया यहोशापात के लिए चिन्ह था, मिकाया यहोशापात के लिए चिन्ह था कि परमेश्वर एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को तैयार रखता है। अब ध्यान दें, उसके पास 400 भविष्यद्वक्ता थे, आहाब के पास। उसने उन 400 भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया और एक मत होकर उन्होंने उसे बताया, और तभी यहोशापात के हृदय में परमेश्वर का जन, वो जान गया कि कहीं कुछ गड़बड़ी थी। वो जान गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं? 400 वहाँ खड़े थे। इसके बाद उसने कहा, ये सब के सब भविष्यद्वक्ता हैं, यहोवा के भविष्यद्वक्ता। वहाँ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, यूनिटेरियन, ओ प्रभु, वहाँ ट्रिनिटेरियन और सारे विभिन्न प्रकार के हमारे पास सारे यहाँ हैं। और एक चित होकर वे कहते हैं, यहाँ ये एक महानतम राष्ट्र है, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। जैसे कि एक छोटा लड़का कब्रिस्तान में सीटी बजा रहा है, आप जानते हैं कि वो डरा हुआ है, आप उसकी चिंता ना करें। कहा, क्या तुम्हारे पास एक और नहीं है? उसने कहा, ओ हाँ, यहाँ एक और है, परंतु कहा, मैं उससे घृणा करता हूँ। उसने कहा, वो हमेशा इस राष्ट्र के लिए बुरा ही कहता है, वो सबसे ये कह रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। यहोशापात ने कहा, मैं उससे सुनना चाहता हूँ। ओ हाँ, वो क्या था? एक चिन्ह। चाहे कितनी भी संस्थाएं और नामधारी कलीसियाएं हो जाएं, परमेश्वर के पास अब भी एक भविष्यद्वक्ता है जो वचन के साथ स्थिर रहता है। यहोशापात जानता था कि अहाब नष्ट हो गया था, क्योंकि वो वास्तविक भविष्यद्वक्ता एलिया राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह था। कहा, कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे, ये ठीक बात है। वो जान गया कि इजाबेल और उसके पास वो आ रहा है, वो जानता था कि ये हो गया, समझे? और मिकाया ने कहा, वे उसके पास आए और कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अगली सभा में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। आप केवल सहमत हो जाओ कि ये सारे प्रचारक ठीक हैं, समझे? आप उसे बता दो, आगे बढ़ो। और कहा, तुम केवल सहमत हो जाओ। कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे, हम देखेंगे कि आप हमारी संस्था में आ जाओ, और यदि आप केवल इतना करो, समझे, यदि आप यहाँ इन थोड़ी सी बातों पर सहमत हो जाओ जिसके विषय में तुम बात कर रहे हो, आप केवल जाकर उनके साथ सहमत हो, उसके साथ आगे बढ़ो। हाँ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन से अलग हो जाए? क्या आप कर सकते हैं? अच्छा, तो इन लोगों ने कहा, हमने एक दर्शन देखा है। ये 400 भविष्यवक्ता, हम जानते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं। हम जानते हैं क्योंकि हम भविष्यवक्ता हैं। मिकाया ने कहा, मैं संदेह नहीं करता कि तुमने क्या दर्शन देखा। मैं जरा भी संदेह नहीं करता तुमने क्या दर्शन देखा, परंतु ये उस वचन के अनुसार नहीं है। आमीन। कहा, मैंने भी दर्शन देखा है। आमीन। ओ अनुग्रह, वो एक चिन्ह था, वो एक चिन्ह था। उसने कहा, मैंने एक दर्शन देखा। ओ, मैंने देखा इसराइल भेड़ों के समान पहाड़ पर तितर बितर है, कोई चरवाहा नहीं है। और ये बड़ा देखभाल करने वाला बिशप आगे बढ़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। कहा, मुझे छोड़कर परमेश्वर का आत्मा कहाँ जाएगा? उसने कहा, तू देखेगा, जब तू जेल में होगा तू देखेगा। वो अहाब ने कहा, इस व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसे दुख की रोटी दो और पीने के लिए दुख का पानी दो। कहा, जब मैं शांति के साथ वापस आऊंगा, कहा, तब मैं इसे देखूंगा। पूरा मिकाया वहाँ यहोवा यूं कहता है के साथ खड़ा हुआ था। उसने कहा, यदि तू वापस आ जाए तो परमेश्वर मुझसे नहीं बोला। यही बात है। वो क्या था? वो एक चिन्ह था, यहोवा के भविष्यवक्ता जैसा। परमेश्वर के भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहते हैं। पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा लेना चाहिए। ये झूठा भविष्यवक्ता है। यदि आप कहते हैं कि आपके मध्य में भविष्यवक्ता है जो ये कहता है कि तीन ईश्वर हैं, ये झूठा भविष्यवक्ता है। इसके लिए कोई भी पवित्र लेख नहीं है। ये ठीक बात है, परंतु परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता उस वचन के साथ स्थिर रहेगा। और यदि उसका दर्शन उस वचन के विरुद्ध है तो वो परमेश्वर की ओर से सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। बाइबल में कहीं भी कभी भी किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा नहीं लिया। पौलुस को वहाँ जेल में देखिए, एक छोटा पतली नाक वाला यहूदी गंजा वहाँ पड़ा हुआ है। रोम की जेल में 20 वर्ष रहा, उसने ये पत्रियाँ लिखी। अब आप क्या सोचते हैं, महिला प्रचारक ने पौलुस के विषय में क्या सोचा जब उसने कहा, वे महिलाएं कलीसियाओं में शांत रहें, मैं उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे बोलें। मैं कल्पना करता हूँ कि उन्होंने वास्तव में उस पर कार्य किया होगा, कर सकते होंगे। आप क्या सोचते हैं कि उन बिशपों ने क्या सोचा होगा? वे बिशप जब उन्होंने ये सारी विभिन्न बातें की, ये बातें यहीं छोड़ दो और इसे यहाँ से सब ये वो, पौलुस मुझे बताओ ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है। परंतु वो यीशु से मिला था, वो जानता था कि वो किस विषय पर बात कर रहा है। पौलुस के मर जाने के पश्चात उसी झुंड में से उन्होंने अंततः बिशपों का झुंड बना लिया और ऊंचे ऊंचे नीचन सभा को, और इससे कैथोलिक कलीसिया का निर्माण हुआ। परमेश्वर के वचन से अलग हो गए। वहाँ से आपके ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा आए। मैं कहीं भी किसी भी राष्ट्र में चुनौती देता हूँ कि कोई इसे गलत सिद्ध करे। यहोवा यूं कहता है, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधियों के प्रयोग के साथ गलत है। यहोवा यूं कहता है, यहाँ मैं आपसे प्रत्येक को आज्ञा देता हूँ, टेप पर जिसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। पौलुस प्रेरित 5:9 या 19:5 में कहा, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि कोई पवित्र आत्मा भी है। कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, हमारा बपतिस्मा हो गया, परंतु मसीही बपतिस्मे में नहीं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मसीही बपतिस्मा नहीं है। बाइबल में किसी भी मसीही का बपतिस्मा इस प्रकार नहीं हुआ था। बाइबल के सैकड़ों वर्ष पश्चात ये कैथोलिक का मत सार है, न कि मसीही शिक्षा। मुझे बाइबल में दिखाएं। ये एक ठोका है, ये शैतान का कार्य है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि जिन लोगों का बपतिस्मा इस प्रकार हुआ है वे उस प्रकार के हैं। आज वहाँ परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं जो भली प्रकार से नहीं जानते, परंतु समय आ गया है, हमें वचन पर वापस आना है। यदि हम आशा करते हैं कि परमेश्वर वैसे ही कार्य करे जैसे पहले किए। मेरी माँ जब मर रही थी, मैंने उससे कहा, उसके मरने से पहले मैंने कहा, माँ जब मैं मसीही हुआ एक लड़के के समान तो मैं खोजने और पाने लगा। मैं जान गया दर्शनों से परमेश्वर था, जो कि आप जानते हैं, और वे बातें जो जीवन में घटित हुई। मैंने कहा, तब मैंने पाया कि कैथोलिक कलीसिया ने कहा, हम कलीसिया हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बाइबल क्या कहती है। हम विश्वास करते हैं कि ये ठीक है, परंतु हम कलीसिया हैं। जो हम कहते हैं स्वर्ग में परमेश्वर इसको बांधता है और इसलिए वे इस प्रकार से करते हैं, ये एक देह है। लूथर उन्होंने कहा वे गलत हैं, हम इस प्रकार विश्वास करते हैं। बैप्टिस्ट कहते हैं वे सब गलत हैं, हम इस प्रकार विश्वास करते हैं। और सैकड़ों इस प्रकार के झुंड हैं। क्यों? आपके पास कैसे कभी विश्वास हो सकता है? इनमें से कौन सा ठीक है? केवल एक ही चीज ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जान पाया। मैंने कहा माँ, मैं वापस बाइबल पर गया और पाया कि वे पहले प्रेरित किस प्रकार थे, उनके पास किस प्रकार की कलीसियाएं, उन्होंने कैसे सिखाया और जो चीजें उन्होंने की मैंने ठीक वैसे ही किया जैसे उन्होंने किया, जिस प्रकार बाइबल में है, और मुझे वही परिणाम मिले। आमीन। अभिव्यक्ति को क्षमा करें, परंतु पुडिंग का प्रमाण यह है कि उसको खाना, ये सत्य है। वही परिणाम मिले जो उनको मिले। जी हाँ, इसलिए आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। 900 विभिन्न मार्ग इधर उधर जाने के लिए हैं। तब मैंने बाइबल में पाया कि यीशु ने स्वयं कहा, यदि कोई मनुष्य एक शब्द निकालेगा या उसे बदलेगा, इस पुस्तक में कोई भी जो कुछ इसमें मिलाएगा या इसमें से कुछ निकालेगा, वही जीवन की पुस्तक में से उसका भाग निकालेगा। उसे दर्शाया कि उसका नाम वहाँ है, ठीक है, परंतु ये निकाल दिया जाएगा। हमें इस वचन पर वापस आना है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी असफल नहीं होगा। जी हाँ श्रीमान, हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। यीशु ने कहा हम वचन के साथ स्थिर रहें। जी हाँ प्रभु। हाँ, यहोशापा जानता था कि परमेश्वर एक सच्चा वास्तविक भविष्यवक्ता रखता है जो उसके वचन के साथ स्थिर रहता है और इस पर समझौता नहीं करता था। नहीं श्रीमान, वो ठीक इसके साथ बना रहता है। 400 उसके विरुद्ध अपनी भविष्यवाणियों के साथ भी, परंतु उसका वचन परमेश्वर का था उन्हीं चिन्ह और चीजों के साथ। और आज मैं कहता हूँ कि हमें किसकी आवश्यकता है? एक मनुष्य की, एक भविष्यवक्ता हमारे मध्य में से उठ खड़ा होता है, चाहे जो हो वो परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहता है, चाहे कोई कुछ कहे या नामधारी कलीसिया जो भी कहती हो। मिकाया के पास कोई सहयोग नहीं था, मूसा के पास कोई सहयोग नहीं था, नूह के पास कोई सहयोग नहीं था, इनमें से किसी के पास नहीं, कभी कोई सहयोग नहीं था, ये सब उनके विरोध में था। परंतु वे एक चिन्ह थे उन बुरे दिनों में, इसके पहले कि परमेश्वर न्याय को भेजे। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और चाहता है कि उसके लोग उसके वचन को पूरा करें। प्रभु की महिमा हो। अब से कुछ मिनटों बाद हम इसे बंद करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुने। एक मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, जिसका नाम यहुन्ना था, एक भविष्यवक्ता चिन्ह। इसके पहले कि यीशु कभी इस पृथ्वी पर आकर स्वयं को घोषित करता, उसने उसके आगे एक भविष्यवक्ता भेजा। क्या उसने ये किया? उसने एक भविष्यवक्ता भेजा। पुराने नियम के एलिया ने भविष्यवाणी की थी कि एलिया की सामर्थ में आने के लिए पुराने नियम का, उसे एक भविष्यवक्ता चिन्ह होना था कि यीशु आ रहा था, कि एक मसीह का आना हो रहा था। और जब यहुन्ना जंगल में से निकलकर आया, वो एक चिन्ह था कि मसीह आने वाला था। जब यहुन्ना प्रकट हुआ, इसराइल को अपने भविष्यवक्ता के द्वारा जान लेना चाहिए था। यही जहाँ पर लोग इसे चूक गए, वे अपने भविष्यवक्ताओं का विश्वास नहीं करते। वे विश्वास नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते कि जो पत्रस ने पेंतिकुस पर कहा था ठीक था। वे विश्वास नहीं करते कि वो ठीक था। जो पौलुस ने कहा वे विश्वास नहीं करते, वही बात पत्रस ने की और कहा यदि स्वर्ग से कोई दूत कोई दूसरा वचन प्रचार करे तो वो श्रापित हो। वे इसका विश्वास नहीं करते। देखा, वे इसका विश्वास नहीं करते और उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं का विश्वास नहीं किया। यदि वे ये जान गए होते, वे ये जानते कि यशायाह ने कहा है कि एक पुकारने वाले का शब्द जंगल में सुनाई पड़ेगा, वो प्रभु के आगे मार्ग को तैयार करेगा। उन्हें ये जान जाना चाहिए था। वो भविष्यवक्ता था, भविष्यवक्ताओं का राजकुमार। उसने उन्हें बताया परंतु उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। नहीं नहीं, उसने कहा कि मसीह आ रहा है। ये मनुष्य वो मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। ओ भाई, उसके पीछे कोई नहीं था। परमेश्वर ने उसके पीछे चलने के लिए छोटा झुंड दिया, जैसे कि एलिया को दिया। परमेश्वर ने उसका अनुकरण करने वाले उसको दिए। वे उसे किसी राजनीतिक संस्था से नहीं मिले। उसने वचन प्रचार किया, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहा और परमेश्वर ने उसे एक छोटा झुंड दिया। एलिया परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहा, परमेश्वर ने उसे छोटा झुंड दिया। इस मनुष्य के पास कोई सहयोग नहीं था, उसके पास कोई पीछे चलने वाला नहीं था, कोई सहयोग नहीं, किसी संस्था से संबंधित नहीं, कुछ नहीं मांगा और किसी से नहीं डरा। ये यहुन्ना था। क्यों? वो परमेश्वर के पास से भेजा गया मनुष्य था। यही कारण था कि वो खड़ा रहा। वो एलिया था जो वहाँ खड़ा हुआ लोगों को ये सिद्ध कर रहा था कि मसीह आने वाला था। उसने कहा, मैं वो शब्द हूँ जो जंगल में पुकारता है, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वे फरीसी और सदूकी वहाँ खड़े हुए और अपने लवादों और चीजों पर वाद विवाद कर रहे थे। ठीक उस समय जब वे इस विषय पर कलह और विवाद कर रहे थे, ठीक उन्हीं के मध्य में मसीह चलता हुआ आ गया। यूहन्ना ने कहा, देखो वो ये रहा। हालेलुया, उस पर ध्यान दें। उसने उसका परिचय नहीं कराया। वो वहाँ है, वो ठीक अब तुम्हारे मध्य में खड़ा हुआ है। लगभग उस समय आकाश गरजा, यीशु पानी में उतर गया और यूहन्ना ने गवाही दी, परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई नीचे उतरते देख रहा था। एक शब्द चिल्ला रहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। ओ प्रभु, यूहन्ना ने कहा, अब मुझे घटना चाहिए, वो बढ़ेगा। ओ क्या ही भविष्यवक्ता, इसराइल के लिए एक चिन्ह। जी हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य था, यद्यपि उसका पिता याजक था। ओ हाँ, उसका पिता जकरिया एक याजक था। परंतु क्या आपने ध्यान दिया, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को उनकी संस्थाओं के साथ मिलने नहीं देता। उसका पिता उसे धर्म विद्यालय में ले जा सकता था, उसे नामधारी की अमुक अमुक, उसे बढ़िया सेवक बनाता, आप जानते हैं, और उसे प्रशिक्षित करता और उसे वे सब चीजें देता जो उसे लेनी नहीं थी। परंतु परमेश्वर ने उसके प्राण को दूषित नहीं होने दिया। क्या आप समझ गए, वो उस मनुष्य को संस्थाओं के साथ मिलने नहीं देगा। वो उसमें से किसी से संबंधित नहीं है, कोई वर्ग नहीं, फरीसी, सदूकी या हेरोदियन या ये जो कुछ भी हो, परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देगा। उसका जन्म विचित्र था, वो एक विचित्र बालक था, वो एक भविष्यवक्ता था, उसका पिता याजक था, परंतु वो उनके उन ढोंग के साथ उनसे मिलने नहीं देगा। फरीसीवाद के धर्म और बातें, उसने क्या किया, वो उसे बाहर जंगल में ले गया और उसे रेगिस्तान में प्रशिक्षित किया। क्या ही प्रशिक्षण है, आमीन। उसने उसे अनुभव के द्वारा प्रशिक्षित किया, ये सबसे अच्छा है, परमेश्वर को जानना। जब वो बाहर आया, वो ठीक ठीक जान गया कि उसका प्राधिकार क्या था, और परमेश्वर ने वो प्राधिकार प्रमाणित किया। उसने उसे कहाँ प्रमाणित किया, नदी पर। अब यदि आप दो और दो चार कह सकते हैं, नदी पर। हाँ, मैं वो जंगल में पुकारने वाला शब्द हूँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य, परमेश्वर उसे इससे दूषित नहीं होने देगा। उसने उसे जंगल में प्रशिक्षित किया परमेश्वर के द्वारा। उसने उसे प्रशिक्षित किया उनके विद्यालयों में नहीं, उनके धर्म विद्यालयों में नहीं। यदि वो करता तो वो उन सब बातों से उसे प्रमाणित कर देता, जैसे कि आज विद्यालयों में से निकलकर आते हैं, सब प्रकार के विद्यालयों में से, केवल प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट नहीं, परंतु पेंटिकॉस्टल विद्यालय ऐसे ही खराब है जैसे कि उनमें से कोई धर्म विद्यालय उन्हें उत्पन्न करता है। नहीं, यशाया की आत्मा ने बताया, उसका आगमन, यूहन्ना का आगमन वचन के अंदर पहले से बताया गया था। यशाया 40:3, कहा, मैं अपना दूत अपने आगे आगे भेजूंगा, मार्ग तैयार करो, या ये मलाकी 3 था, कहा मलाकी 3, वो अपना दूत अपने आगे आगे भेजेगा, भविष्यवक्ता, अंतिम भविष्यवक्ता ने उसके विषय में बोला, अंतिम बात उसके विषय में बोली गई। याद रहे, पुराने नियम की अंतिम पुस्तक ने कहा, एलिया इसराइल के बालकों के पास आएगा, इसके पहले की मसीह को दर्शाए। क्या आप तैयार हैं? बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य ये दर्शाती है कि अंतिम दिनों में उसका अन्य जाति कलीसिया में वापस आना है, एक चिन्ह। कैसे वे इस पर चूक गए? उसके फिर से आने की भविष्यवाणी की गई प्रभु के दूसरे आगमन से थोड़ा सा पहले, मलाकी के 4 अध्याय में, और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, वो भी हमें बताता है कि अंतिम दिनों में वो यहाँ पर होगा, वही जो लोगों के लिए मध्यस्थता में खड़ा होगा, उस छोटे झुंड के साथ जो परमेश्वर उसे देगा। वो अंतिम दिनों में आएगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वो इस अन्य जाति राष्ट्र के लिए एक चिन्ह होगा कि उसका समय अब नहीं रहा। और स्मरण रखें, जब वो दृश्य में प्रकट होता है तो समय निकट है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसे भेजे, समय निकट है। जैसे ही उसकी सेवकाई समाप्त हो गई, मसीह ने स्वयं को दर्शाया। जैसे ही ये महान वाला जो अंतिम दिनों में आएगा अपनी सेवकाई समाप्त करेगा, मसीह स्वयं को दर्शाएगा। ये ऐसा ही होगा। समय निकट है, इसलिए अच्छा है कि हम प्रार्थना करें। अच्छा हो कि आप प्रार्थना करना आरंभ करें। इस युग में उसके परमेश्वर का दिया हुआ चिन्ह ये सिद्ध करेगा कि वो क्या है। प्रत्येक इसे जान जाएगा, परमेश्वर इसको प्रमाणित करेगा। वो इस पृथ्वी पर उसके द्वारा चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा जो कभी नहीं किए गए। मेरा अर्थ झटकों, हिलने और अन्य भाषा बोलने से नहीं है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा समर्थित होगा, जैसे कि ये मनुष्य था। क्यों? उसके आने की भविष्यवाणी मलाकी 4 और प्रकाशित वाक्य 3 में हो गई है। इसलिए वो आएगा, उसे कोई नहीं रोकने वाला। वो आ रहा है। आमीन। वो यहाँ पर होगा। आमीन। लोगों को आज मुंह के बल होने दो और परमेश्वर की दुहाई देना आरंभ करने दो और देखिए क्या घटित होता है। आप उसे सामर्थ्य में प्रकट होते देखेंगे। जी हाँ श्रीमान, वचन के अनुसार उसका चिन्ह संदेश घुमाने वाला होगा। उसका क्या होगा? उसको क्या होते जानेंगे? हम कैसे जानेंगे कि ये यही सही वाला है? आप जानते हैं कि व्यवस्था विवरण 20:20 पद में इसराइल ने एक बार पूछा, मैं विश्वास करता हूं कि यही है। उसने कहा, हम कैसे जानेंगे कि यही सही वाला है? हम कैसे जाने? परमेश्वर हमें बताए, हम उसे जानेंगे कैसे? वो क्या करेगा? वो पुत्रों के हृदयों को सच्चे पेंटिकॉस्टल संदेश की ओर फेरेगा, आरंभ वाले। ओ प्रभु, एक चिन्ह जिसको अनदेखा कर दिया गया, एक वास्तविक चिन्ह, और वे इस पर चूक गए। वे सदा ही चूकते हैं। सच्ची कलीसिया की ओर पीछे मुड़े, सच्चे संदेश की ओर। वो नामधारी कलीसियाओं के विरोध में अकेला खड़ा होगा, बेधड़क, निडर, यहोवा यूं कहता है के साथ। वो किसी भी नामधारी कलीसिया के साथ समझौता नहीं करेगा। उसका किसी के साथ मतलब नहीं होगा। वो मतलब के लिए कुछ ना कहेगा। वो सीधे सीधे वचन पर स्थिर होगा। यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर उसकी सेवकाई को चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ प्रमाणित करेगा, वचन का महान प्रकाशन, और लोगों को खींच कर लाएगा। क्या ही दिन है जो निकट है। जैसे वो पतरस और यहुन्ना के समान खड़ा होगा पेंटिकॉस्ट के दिन। पेंटिकॉस्ट के बाद वे पवित्र आत्मा से भर गए, वहाँ बपतिस्मा दिया। वे सन्हेदरीन के आंगन में खड़े हुए, वे सारे साहस जिसके साथ वे खड़े हो सकते थे खड़े हुए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से और कुछ ना सिखाना। उसने कहा, क्या हमारे लिए ठीक है कि हम तुम्हारी सुने या परमेश्वर की? तुम ही स्वयं न्याय करो, अनभिज्ञ अनपढ़ लोग। आमीन। परमेश्वर, वे भविष्यद्वक्ता थे। वे परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता थे। वे पवित्र आत्मा का चिन्ह थे। वे भविष्यद्वक्ता थे। वे जान गए। वे यहुन्ना के समान थे। वे वहाँ पेंटिकॉस्ट पर थे और उन्होंने कुछ पाया था। वे हमारे आज के प्रचारकों के समान नहीं थे। स्वयं निर्मित विधि, डींग मार कि हमारी क्या ही बड़ी संस्था है, हमारे बड़े झुंडों में कितने हैं, हम एक बड़ी संस्था के समान खड़े हैं, हम महान मिशनरी कार्य करते हैं। ओ अनुग्रह हो। ओ हमारे पास और लोगों से अधिक भीड़ है। ये क्या है? ये राजनीतिक खिंचाव है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सुने अगले 2-3 मिनट में। एक राजनीतिक खिंचाव, निश्चय ही मैंने कुछ मिनटों पहले कुछ कहा। आप जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। एक चिन्ह जिसकी भविष्यवाणी हुई, मैंने उसे छोड़ दिया, आपके पाले में डाल दिया, समझे? अच्छा, केवल आप ही नहीं परंतु वे जो इसे सुनेंगे, ये आपके ऊपर है। आप जो चाहें इसके साथ करें। आप प्रार्थना करें और देखें, परमेश्वर दृश्य में आता है। उसे अपना वचन पूरा करते देखें, वो प्रतीक्षा कर रहा है। जब एटम बम और लोग पेंटागन में डरे हुए हैं, वे नहीं जानते कि क्या करना है। आकाश में विचित्र उड़न तस्त्री के चिन्ह और हर चीज जो परमेश्वर ने पहले से बताई कि ये एरिया का समय है, वो कहीं है कि दृश्य पर आए। वे लोग, वे छोटा झुंड, वे बचे हुए लोग जिन्हें परमेश्वर उसे देगा, वे थोड़े से बचे हुए परमेश्वर को पुकारें और देखें कि क्या घटित होता है। राष्ट्र के दृश्य पर शक्ति परीक्षण होगा। वहाँ एक सामर्थ होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। परेशानी ये है, इस बार उनको बहुत देर हो जाएगी, द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए स्मरण रखें, हम अंत समय पर हैं। प्रार्थना करें। आज देखिए, जिसे हम सेवकाई कहते हैं, हमारे पास क्या है। अब बंद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे कुछ महान नेता लोग, हमारे महा सुसमाचार फैलाने वालों ने कहा, यदि एक वर्ष बाद मैं अपने 10% मत परिवर्तित पा सकूं, तो मैं बहुत धन्यवादित होऊंगा। जबकि बहुत पहले नहीं कि फिनी के उसमें 97% थे। पौलुस के 100 जमा 100 एक बचता और वो इतना भर जाता कि भाई वो जाकर किसी और को बताता, वो किसी और को बताता, लाखों में हो जाते। क्यों? उनके पास कुछ था, वे वचन पर थे। आज हम बड़ी भीड़ के विषय में सोचते हैं, ये क्या है? एक राजनीतिक संस्था। यदि हम आते, कोई बड़ा सुसमाचार फैलाने वाला नगर में आता, पहले क्या आता? लोगों का झुंड। और यदि सारे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, सारे वे एक छोटा झुंड बना लेते, ताकि वो केवल ये प्रचार कर सकता है, वो ये प्रचार नहीं कर सकता, और वो ये प्रचार नहीं कर सकता, परंतु ये प्रचार कर सकता है। आपके पास क्या है? और वे वहाँ जाते हैं, स्त्रियाँ, मैं पेंतिकोस्तलों के विषय में बात कर रहा हूँ, स्त्रियाँ वहाँ जाती हैं वेदी तक, वे आग्रह करते हैं, मैं सदा ऑल्टर बुलाहट के विरुद्ध हूँ, जैसे भी कह सकते हैं, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। कोई कैसे आ सकता है जब तक कि उसे परमेश्वर ना बुलाए? आप उसे अलग नहीं रख सकते। यदि परमेश्वर ने उसे बुलाया है तो आप उसे क्या बुला सकते हैं? ऑल्टर पर सामने बुलाना मेथोडिस्ट का विचार है, ये ठीक बात है। वेदी पर सामने बुलाना, वे उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जॉन तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ बहुत समय पहले मर गई। ओ हाँ भाई, ओ ये मत परिवर्तन नहीं है। यहाँ कुछ रात्रियों पहले लूजविले में हमारे यहाँ दर्शाया गया, एक स्त्री शव पेटिका में हथियार बंद गाड़ी के मंच पर लाई गई। सैकड़ों लोगों ने कहा, प्रचार मंच की ओर भागो। सुसमाचार डरावना नहीं है, ये सहानुभूति की भावना नहीं है, ये दोष सिद्ध का मत परिवर्तन है। इन सभाओं में ध्यान दें, ये महान सुसमाचार फैलाने वाले, और यहाँ तक कि मेरी नम्र छोटी सेविकाई में मुझे हटाकर भी नहीं, कभी कभी बाहर जाने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है, ये सच बात है। हम क्या करते हैं? खड़े होकर सामने प्रचार मंच की ओर बुलाते हैं और उनको समझाते हैं। छोटी छोटी लड़कियां वहाँ पर आती हैं और चिंगम चबाती हुई, देखिए मैं जा रहा हूँ। ये स्त्रियाँ बाल कटे हुए और रंगे चेहरों के साथ आती हैं, पेंटिकॉस्टल अंदर और बाहर आती जाती हैं। वे कहते हैं कि वे भाषाएं बोलती हैं और कभी भी अपने बाल नहीं बढ़ने देती, और अब भी यही कार्य करती हैं जो उन्होंने किए। आप मुझे बताएं कि ये मत परिवर्तन है, ये परमेश्वर का ठट्टा करना है। बाइबल कहती है कि ये पाप है और उनके लिए बाल कटाना अशोभनीय है। कैसे एक बाल कटी स्त्री उसे जिस स्त्री ने अपना चेहरा रंगा हुआ है दोषी ठहरा सकती है? हो सकता है अच्छी प्रकार से सुन रही हो, जब तक कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर नहीं लगाया जाता, समय पास आ रहा है, हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा जाएगा। क्या बात है, ये गलत था, क्योंकि हमारे आधुनिक कहलाने वाले प्रचारक यहाँ पर बड़ी भीड़ और गलत चढ़ी कमीजें और संस्थाएं परमेश्वर के विषय में उन अफ्रीकन जनजातियों से जो इजिप्शियन नाइट के विषय में नहीं जानते, अधिक नहीं जानते, जब ये आता है वे वहाँ जाते हैं। क्या हो यदि वे लोग पेंतिकुस्त पर वहाँ जाकर ये कहते, अब यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हम यहाँ पर आकर जब तक रुके रहें, जब तक कि ऊपर से सामर्थ्य ना पाए। अब भाइयों, हम यहाँ पहले ही पिछले 9 दिनों से यहाँ पर हैं, आओ हम इसे विश्वास से स्वीकार कर लें। अब हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम बाहर जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर रहे हैं, हमने वही किया है जो यीशु ने हमसे करने को कहा, तो वहाँ पर कोई अनुभव नहीं होगा। मैं आपको कुछ बता दूं, मैं जानता हूँ कि यह टेप पर है, परंतु जो भी है ये यहाँ आता है, सुनिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये लज्जा की बात है, लोग यत्न कर रहे हैं। मैंने कभी भी ये विश्वास नहीं किया कि पवित्र आत्मा हिला रही थी, मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया कि पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं बोलना प्रमाण है, या रोना या चिल्लाना, ये भावनात्मक अनुभूतियाँ हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ये कर सकता है, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व का निवास है। और मैं विश्वास करता हूँ अधिकतर लोग जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है, इसके विषय में एक बात भी नहीं जानते। आप परमेश्वर से मिलते हैं। जैसे उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने कहा, अब आज बैप्टिस्टों के समान प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, मैं पूछता हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पास? ओ हाँ, हम इसे विश्वास से स्वीकार करते हैं। विश्वास से कुछ नहीं, वो वहाँ नहीं है, ये अनुभूति है। आप सूर्य देखना पसंद करते हैं और आप खड़े होते हैं और सूर्य को नीचे जाते देखते हैं और रोते और आंसू बहाते हैं, ये परमेश्वर नहीं है, ये वो भावना है जो आपके भीतर है। आपने किसी से सुना बीमार है या कोई मर रहा है और चिल्लाते और रोते हैं, ये परमेश्वर नहीं है, ये मानवीय भावना है। कैसे परमेश्वर, मैंने गेंद के खेल में लोगों को देखा है, वे इतने आनंदित हो जाते हैं कि वे अपने होंठ फड़फड़ाते हैं और बहुत कुछ। मुझे ना बताएं, हम एक बेदारी की आवश्यकता में हैं, एक उद्धार। और पेंटिकोस्टल आसपास आते हैं और लोगों को तैयार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जब वे अन्य भाषा बोलते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया और उनमें से इसके पश्चात बहुत से सब प्रकार का जीवन जीते हैं। भाई सुनिए, पेंटिकोस्ट के दिन ऐसा नहीं था, उन्होंने कभी भी किसी भाषा का विश्वास नहीं किया या किसी भी चीज का। जबकि वे वहाँ सब एक स्थान में एक चित्त में थे, परमेश्वर वास्तविक रूप में उनके मध्य में उतर आया। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर देखा आग की जीवें जो उनके सिरों पर ठहरी हुई थी। परमेश्वर वहाँ था, ये विश्वास से स्वीकार करना नहीं था या कोई उत्तेजना। वे पवित्र आत्मा से भर गए और सब बाहर जाकर अन्य भाषाएं बोलने लगे, परंतु पहले वे परमेश्वर से मिले। आज यही मामला है, लोग अच्छी स्थिति में आते हैं और उत्तेजित और भावुक हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व का निवास है। आपके शब्द उसका शब्द है। मैं आपको बताता हूँ, आज हमें एक बुलाहट की आवश्यकता है। लोग भीतर जाते हैं, इस प्रकार से स्त्रियाँ भीतर जाती हैं, अन्य भाषाएं बोलती हैं, बाहर आती हैं, और आप उनके स्थानों में जाएं जहाँ उनकी कलीसियाएं हैं। मेरी इच्छा थी कि बिली यहाँ बैठा था। मुझे हाल ही में दक्षिण से उस दिन पत्र मिला जिसमें उस महिला ने कहा, मैं किसी बड़ी दूसरी कलीसिया में से हूँ, पेंटिकॉस्टल की बड़ी संस्था, बड़ी त्रिएकता वाली एक संस्था। और कहा, हमारी सारी महिलाएं, भाई बहनों, वे अपने बाल कटवाती हैं, मेरे काले लंबे है। उसने कहा, मुझे ये सदा प्यारे लगते हैं क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रभु के हैं। कहा, मैंने कभी सिंगार नहीं किया, हमारी कलीसिया सिखाती है कि ये पुराना रिवाज है। कहा, वे मुझसे कहते हैं जब मैं अपने बालों को पीछे गोलाई में बांध लेती हूँ। कहा, देखो, आप पीछे की एक और पंचर वाला पहिया लगा लेती हैं और ये सब इस प्रकार से। कहा, आप पंचर हुआ एक टायर अपने सिर के पीछे लगाए फिरती हैं। और कहा, अंततः मेरे पति ने कहा, तुम क्यों नहीं अपने बालों को कटवाकर और बाकी लोगों के समान हो जाती हो। अब मेरा पत्र उसके पास वापस जा रहा है। उसने कहा, क्या ये ऐसा है, मैंने आपका टेप सुना कि वो मसीह बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है। अब आप जानते हैं कि वो लेने जा रही है, क्या नहीं जानते? ओ हाँ हाँ। उसने कहा, भाई बहनों, मुझे बताएं, मैं भूखी हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया है। आपके पीछे पिछले हुए पति के लिए लज्जा की बात है और उस ईश्वर रहित झुंड के लिए जिनके साथ आप आराधना करती हैं, उनमें से बाहर निकल आओ। ठीक है, परमेश्वर बदल नहीं सकता। जब परमेश्वर कोई बात कहता है उसका कोई अर्थ होता है। मैं चिंता नहीं करता कितने पिछले हुए प्रचारक हैं जो कि समझौता करना चाहते हैं ताकि एक बड़ी संस्था या झुंड हो जाए। हमें उद्धार करवाने वालों की आवश्यकता है। कौन खड़ा होगा और अपनी पत्नियों को इस प्रकार करने देगा? मुझे आपके मसीह होने के अनुभव पर विश्वास है। प्रायश्चित करें या नष्ट हो जाएं। ओह, इसी प्रकार से अंदर जाते हैं, कलीसियाओं में शामिल होते हैं, पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं, बाहर वापस आते हैं और जरा भी नहीं बदलते, वैसे ही बने रहते हैं, जरा भी नहीं हिलते। ओ अनुग्रह हो, ये क्या है? आधुनिक इजाबेलें। बाइबल में केवल एक ही स्त्री है जिसने अपना मुंह रंगा और परमेश्वर ने उसे कुत्तों को खिला दिया। आधुनिक इजाबेलें अपने पतियों को कॉलर से पकड़कर घुमा रही हैं। कोई साधारण बेकार मनुष्य जो अपनी पत्नी को इस प्रकार करने देगा? छोटे छोटे कपड़े पहनना और चीजें, और निकलकर सड़क पर जाना और इस प्रकार के कपड़े पहनना जैसे कि दिखे कि खाल से चिपके हों, जैसे कि एक पुरुष हिजड़ा इस प्रकार खाल चढ़ा और जाए। मैं ये उपहास के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उपहास करने का स्थान नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है। ठीक है, इतने कच्चे कपड़े पहनकर सड़क पर जाएं, यहाँ तक कि चला ना जाए, तब कोई व्यक्ति उस पर कटाक्ष करे और आप उससे लड़ना चाहें, आपके लिए चाहिए आपके गाल पर एक थप्पड़ लगे, ये ठीक बात है कि आप उसे करने दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप किस चीज के बने हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। हमें किसकी आवश्यकता है? सुसमाचार की। परमेश्वर किसी को दृश्य पर उठाए जो ठीक वचन पर लौटे। परमेश्वर ने कहा, यहाँ तक कि अशोभनीय बात है कि स्त्री कलीसिया में आकर और अपने कटे बालों के साथ प्रार्थना करे। और जो स्त्री अपने बाल कटाती है उसे मनुष्य को सिद्ध अधिकार है कि उसे तलाक ले ले। वो स्त्री सम्मान की योग्य नहीं है, बाइबल ने ऐसा कहा, वो अपने पति के लिए अपमानित है। संभव है वो ये ना जानती हो। कोई भी स्त्री छोटे वस्त्र पहनती है वो अपमानित है। हो सकता है वो ना जानती हो। महिला, मैं आपको आघात पहुंचाने का यत्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी झील से बचाना चाहता हूँ, नरक से। प्रायश्चित करो। अच्छा, आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। परमेश्वर के साथ जो आप में रहता है वही परमेश्वर जिसने आपसे कहा कि आप ये ना करना। अच्छा आप कहते हैं मैंने अन्य भाषाएं बोली हैं, मैंने प्रेत आत्माओं को भाषाएं बोलते देखा है, मैंने अफ्रीका में देखा मनुष्य की खोपड़ी से लहू पीते हुए और भाषाओं में बोलते हुए और आत्मा को बुलाते हैं। मैं जादू टोने वालों की बस्ती के स्थानों में था जहाँ वे भाषाएं बोलते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। मैंने देखा कि पेंसिल टेबल पर उन्होंने भाषा लिखती है और व्यक्ति वहाँ आकर उसका अनुवाद करता है। ये सत्य था। मुझे भाषाओं के विषय में ना बताएं। हमारे पास अब ये बहुत कुछ है। तो अभी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पास अन्य भाषा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अन्य भाषाओं में बोलता है परंतु उस पर आश्रित नहीं होता। पौलुस ने कहा चाहे मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और पवित्र आत्मा ना हो तो मैं कुछ भी नहीं, यद्यपि मैं पहाड़ों को हिला दूं। बहुत से लोग कहने का यत्न कर रहे हैं ओ ये परमेश्वर का एक महान व्यक्ति है, आपको बड़े बड़े आश्चर्यकर्म देखने चाहिए। क्यों? प्रेत आत्माएं चंगा करती है, प्रेत आत्माएं बाहर जाकर और इस प्रकार के कार्य करती हैं। मैं जानता हूँ जादूगरनियाँ जो बाहर जाती हैं और इस प्रकार की बातें, उसके चारों ओर इस प्रकार का वस्त्र होता है और वे उसमें पैसे रखती हैं, वो अपने सिर के पीछे से बाल लेती हैं और लहू में लपेटती हैं और उसमें फेंकती हैं, और वे लोग ईमानदार लोग होते हैं, विश्वास करते हैं। ये वो मनुष्य नहीं, ये वे लोग विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास पहुँच करते हैं उस जादूगरनी के द्वारा। क्या यीशु ने नहीं कहा बहुत से मेरे पास आएंगे उस दिन और कहेंगे मैंने एक चंगाई की महासभा की? ये चिन्ह नहीं है, ये एक चिन्ह है कि हम अंत में हैं। क्या यीशु ने मत्ती 24 के लगभग 24वें पद में भी नहीं कहा 24:24 और उसने कहा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और इतने महान चिन्ह दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। परंतु चुने हुए परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, वे जानते हैं कि सच्चा चिन्ह क्या है। कैसे एक मनुष्य जो इन चीजों को करता है जो कि परमेश्वर के विश्वास का इनकार करे, ये कहते हैं कि ये प्रभु की ओर से भविष्य रखता है, कैसे संसार में एक मनुष्य कर सकता है? वो एक अहाब के समय का भविष्यवक्ता हो सकता है, यहोशापात जब मिकाया खड़ा हुआ, परंतु उनके पास वहाँ एक था जो वचन पर खड़ा हुआ था, एलिया। प्रभु का ये वचन लिखा हुआ था कि आहाब अपने अंत पर आएगा और उसके साथ एलिया का दर्शन था। और कोई भी मनुष्य जो स्वयं को आत्मिक कहता है या भविष्यवक्ता स्वीकृति देता है कि इसका प्रत्येक वचन सच्चा है, वो कैसे स्त्री एकता वाला हो सकता है? वो कैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले सकता है और कहे कि वो आत्मा से अभिषिक्त है? वो कैसे लोगों को यह गलत सिखा सकता है और फिर भी आत्मा से अभिषिक्त हो? ये नहीं किया जा सकता, ये असंभव है। मैं अनुभव करता हूँ कि ये लोकप्रिय नहीं है, परंतु हम लोकप्रिय नहीं होना चाहते, आप ईमानदार बना रहना चाहते हैं। अब इजाबेल और अहाब, जी हाँ श्रीमान, क्यों? वे क्यों ये करते हैं? वे स्त्रियाँ क्यों करती हैं? अपने बाल काटे हुए रखती हैं और श्रृंगार करती हैं और बाहर जाकर छोटे छोटे वस्त्र पहनती हैं, जबकि वहाँ से पुरुष निकलते हैं और इस प्रकार की बातें उनके पति ये करते हैं, क्योंकि उनके प्रचार मंच पर उन्हें ये सत्य बताने के लिए उनके पास सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। वे उन्हें बताते हैं कि भाई इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये ठीक है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आप ये प्रभु का वचन है। बाइबल बताती है यदि कोई स्त्री पुरुषों के वस्त्र पहनती है ये परमेश्वर के सामने घृणित बात है। परमेश्वर बदलता नहीं, वो कैसे बदल सकता है? और परमेश्वर बना रहे वो अनंत है। उन्हें एक भविष्यवक्ता की आवश्यकता है जो उन्हें ये बताए कि ये अंत का चिन्ह है। बाइबल कहती है कि वे ये करेंगे। यशायाह के 5वें अध्याय में कहा गया कि अंत के दिनों में स्त्रियां ये करेंगी, बिल्कुल ठीक, इसलिए यहाँ वे हैं। परंतु वे कहते हैं प्रचार मंच पर उनके पास भविष्यवक्ता है। परमेश्वर के वचन से डरते हैं, न कि वो भक्त मंडली से डरता है। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें वो अंतिम ज्योति भेजे, वे सांझ के उजियाले जिसे करने की उसने प्रतिज्ञा की है, वो हमारे पास भेजे, उस चुनी हुई कलीसिया के पास जो उन्हें बताए कि सत्य क्या है, परमेश्वर के वचन पर स्थिर। इजाबेल और अहाब तब इन्हें अलग करेगा, ये सही है। स्मरण रखें, जब स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करने लगें, अब जरा पीछे जाएं, एक छोटा टुकड़ा, जब वे अपने बालों को काटना आरंभ करती हैं और इस प्रकार व्यवहार करने लगती हैं, जब स्त्रियां इस प्रकार व्यवहार करना आरंभ करती हैं, ये उस समय है और ये वो समय है कि एलिया अंतिम दिनों में दृश्य पर प्रकट होने को है, उस अंत समय के चिन्ह के साथ जैसा कि लूत के दिनों में था। अंत समय का चिन्ह, स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर देती हैं, अब वे उस प्रकार के व्यवहार कर रही हैं, और ये उस समय है कि एलिशा को दृश्य में प्रकट होना है, साफ करना है और पुकारना, डांटना, तोड़ना, ठीक है। परमेश्वर के चिन्ह के साथ उसके समर्थन में बढ़ रहे हैं। अब वो कोई बड़ा झुंड बुलाने नहीं जा रहा है। बाइबल ने कहा, छोटे झुंड तू मत डर, कि तेरे पिता की भली इच्छा है कि तुम्हें राज्य दे। समझे, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो सबके द्वारा अस्वीकार किया हुआ है, परंतु छोटा झुंड, क्योंकि वो एलिया के समान है अपने 700 के साथ और यूहन्ना अपने छोटे झुंड के साथ। हाँ, आप देखिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हमें सच्चे पेंतिकोस्त पे वापस जाना है, हमें परमेश्वर की बातों पर वापस जाना है, हमें वापस जाना है। भाई बहन, अपने अनुभव में धोखा ना खाओ। हम उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा ना ले कि मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के द्वारा मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आप ऐसा ना करें। आप परमेश्वर के आमने सामने मिले और आप आत्मा से भर जाएंगे और तब देखिए कि क्या घटित होता है। और यदि वो आत्मा जो आप में है इस वचन से भिन्न है, तो आप उस आत्मा को छोड़ दें, जाकर लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको वो आत्मा दे। जब ये आत्मा अंतिम दिन में उठेगा, ये उनके विरोध में चेतावनी होगी कि वे झूठे हैं। समझे, क्योंकि यूहन्ना ने कहा, अपने आप सोचते हुए ना कहो कि तुम अपने पिता अब्राहम से हो। हमारे पिता मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल थे। कहने के लिए मत सोचो कि तुम्हारे पास है, तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मत सोचो क्योंकि तुम पेंटिकॉस्टल हो तुम छोड़ दिए जाओगे। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ये बिल्कुल ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, इस अंत के दिन में केवल सच्चाई से परमेश्वर का वचन बोलो, उसकी भविष्यवाणी। यदि तुम एक मिनट के लिए, मैं वापस घूमूं, मैं आपको दिखा दूं कि हम कैसे पा सकते हैं। मेरे पास वे हैं, यहाँ बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ, उनमें से एक आपके लिए पढ़ दूं। आइए पहले हम व्यवस्था विवरण को लें, 18वां अध्याय। हम एक मिनट में पालेंगे, केवल इसके पहले कि हम बंद करें, इसलिए ताकि मैं ये वचन आपके लिए पढ़ सकूं। व्यवस्था विवरण के 18वें अध्याय में, ठीक है, और अब हम देखेंगे 20वां पद, 18वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 20।
बट द प्रॉफिट व्हिच शैल प्रेस्यूम टू स्पीक a word in my name which I have not commanded him to speak or that shall speak in the name.
परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराए देवताओं के बहुवचन नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाए। ये ठीक है, आत्मिक रीति से गया, जो प्राण पाप करे वो मारा जाएगा। हमारे पास एक परमेश्वर है, ना कि बहुत सारे ईश्वर। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। यहाँ बहुत सारे होंगे, हम कैसे जानेंगे। कहता है, दूसरा वो कहता है, और आदि आदि। अब ध्यान दें, हम जानते हैं, जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और ना पूरा हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। यदि ये परमेश्वर ने नहीं कहा तो तू उसे मत डरना, ये ठीक है, आगे बढ़ो और उसे भूल जाओ। समझे, अब देखिए कि आज हम क्या सुनते हैं। प्रेरितों का मतसार, मेथोडिस्ट का मतसार, बैप्टिस्ट का मतसार, पेंटिकॉस्टल का मतसार, 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 ये क्या है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ कि बाइबल में मुझे प्रेरितों का मतसार दिखाए। मैं विश्वास करता हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है। यदि प्रेरितों के पास कोई मतसार था जिसे वे थामे हुए थे, तो वो ये था, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे है। मित्रों, क्या आप नहीं देखते कि हम कहाँ पर हैं? हम एक भयानक दशा में हैं। ये क्या है? एक सच्चा चिन्ह जिसे अनदेखा कर दिया गया। अब आप पुरुषों और स्त्रियों, आप में से अधिकांश और आपके परमेश्वर के बालक, इसे अनदेखा न करें। स्मरण रखें कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, इन्हें इन्हीं दिनों में घटित होना है, इस घड़ी में जिसमें कि अब हम रह रहे हैं। ये घड़ी मसीह के आगमन से जरा सी पहले की है। एक घोषणा परमेश्वर की ओर से आनी है। मैं इसे आपके लिए पढ़ दूं। आइए पीछे मलाकी में चलें। पुराने नियम का ये अंत है। सुने कि ये यहाँ मलाकी में क्या कहता है। तब हम सुने इसे एक क्षण। अब यदि आप ध्यान दें मलाकी 3, जैसे यीशु बोल रहा है यहुन्ना का आगमन, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये यहुन्ना के आने की घोषणा थी, यीशु का आगमन, और वो मंदिर में आया ठीक वैसे ही जो उसने कहा। वाचा का वो दूत जो साथ, जो जंगल में चेलों के साथ था, यानी इसराइल के साथ, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये वही दूत था? क्यों? उसने कहा मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। अब क्यों पौलुस को रोग दिया गया था कि उसे दबा कर रखे? यीशु के मर जाने के पश्चात और गाड़े जाने और फिर जीवित हो उठा। लंबे समय के बाद पौलुस उससे दमिश्क की राह पर आमने सामने मिला। उसने कहा मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और उसके पास जाता हूँ। पौलुस ने ऊपर देखा, वहाँ एक बड़ी ज्योति थी, वही अग्नि स्तंभ। क्या आप जानते हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ? उसी अग्नि स्तंभ के। और पौलुस उससे बातें कर रहा था और उसने पौलुस से बातें की। लोगों ने उसे नहीं सुना, उन्होंने उसको नहीं सुना, परंतु पौलुस ने उसे सुना। उसने कहा शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ, अब उठ और वहाँ जा जो गली सीधी कहलाती है, तुझे वहाँ बताया जाएगा। वहाँ मेरा एक भविष्य रखता है जो वहाँ तुझे बताने के लिए आ रहा है कि क्या करना है। आपने देखा कि कैसे पौलुस ने लिया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के बुलाने पर पवित्र आत्मा पाया। और पौलुस ने कहा मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया जो कि मुझे दिया गया है, एक शैतान का एक दूत जो मुझे मारता है, जो कि एक के बाद दूसरे थप्पड़ के समान है, वो बढ़िया हो जाएगा और तब वो उसे फिर मारेगा। कहा मैंने 3 बार प्रभु से याचना करी कि इसे मुझसे ले ले, परंतु प्रभु ने कहा पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तब उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रकाशनों की अधिकाई से फूल ना जाऊं। उसके पास पतरस याकूब यूहन्ना किसी और से अधिक प्रकाशन था। उसने उसके जाने के पश्चात संभवतः 2 वर्षों या अधिक अग्नि स्तंभ में खड़ा हुआ उससे बातें कर रहा था।
2000 years.
आज कितना अधिक है? 2000 वर्ष। वो अब भी जीवित है। आमीन। उसने कहा मुझे दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फूल जाऊं और कहने लगूं अब भाई मैं तुम सबसे ऊपर हूं। देखा, मैंने उसको मृतकों में से जी उठने के बाद देखा है, मैंने उससे बातें की हैं। मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं फूल जाऊं, मुझे कुछ दिया गया है ताकि मैं नम्र रहूं। जी हाँ, वही था जिसने उन्हें बताया कि यीशु मसीह के नाम से फिर से बपतिस्मा लो। कहा यदि कोई दूत भी स्वर्ग से, उसने कहा मैं उनके विद्यालयों में नहीं गया जहाँ कहीं वे थे। कहा मैं यरूशलेम को नहीं गया और 14 वर्षों तक नहीं गया। कहा मैं मिस्र को चला गया, वहाँ एशिया में दक्षिण को, और उसने प्रभु से परामर्श लिया। वहाँ वो 3 वर्षों तक पुराने नियम का अध्ययन करता रहा। देखिए ये सब तुलना की गई। जब वो 14 वर्षों पश्चात वापस आया, पतरस और उन लोगों से मिला और उसके पास वही सुसमाचार था, उसी प्रकार से बपतिस्मा दिया और वही कार्य किए। आमीन। वो जानता था कि ये ठीक था। जी हाँ श्रीमान। अब यहाँ मलाकी में सुनिए, मलाकी 3। अब यदि कर सकें मैं जरा आपको ये स्पष्ट कर दूं, मैं विश्वास करता हूँ। अब हम सरलता से मत्ती 11 अध्याय और देखें, यदि मैं संभवतः मेरा ये गलत है, मैं सोचता हूँ कि मुझे मिल गया। इसे देखने के लिए मुझे पहले मालूम करना है। मत्ती 11, आइए देखें, आरंभ करें। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने 2 चेलों को उसके पास ये पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं? यहाँ यूहन्ना की उकाबी आंखों पर जेल में परत चढ़ गई। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना एक भविष्य रखता है और यदि वो ये सुनेगा तो जो हो रहा है वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। समझे? उसने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और सारी नामधारी कलीसियाएं एक साथ हैं। ये इस प्रकार से नहीं कहता, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये नहीं है। उसने कहा लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये चिन्ह है, देखिए, जब वे वहाँ से चल दिए। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अब ध्यान दें, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। दूसरे शब्दों में यानी मुझसे लजाते हो। धन्य है वो जो मुझसे न लजाए, समझे। जब वे वहाँ से चल दिए, यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? अब इस भविष्यवक्ता पर ध्यान दें। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, यूहन्ना को? नहीं नहीं, तुम घास में छिपी हुई सांप की संतानों। उसने उन नामधारी कलीसियाओं से कहा, किसने तुम्हें जताया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये मत कहो कि हम इससे उससे संबंधित हैं, क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से संतान उत्पन्न करे। ओ भाई, ये उसके साथ हवा से हिलता हुआ सरकंडा नहीं था, हवा से हिलता हुआ एक सरकंडा। या तुम वहाँ क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? उसे प्रचार करने में 2 या 3 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। देखो, वो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं राज महलों में पहनते हैं, वे सेवक होते हैं जो बाहर जाकर और बालकों को चूमते हैं, आप जानते हैं, और युवकों के विवाह करते हैं, और विद्यालयों में जाकर ज्ञान की वार्ताएं करते हैं, आप जानते हैं, ये सारी छोटी छोटी बेकार की बातें। देखा देखा, वो सामने की पंक्ति में दो कथित प्रकार की तलवार नहीं चलाता। तुम क्या बाहर देखने को जाओगे? इस प्रकार का कोई व्यक्ति, वो उनसे पूछ रहा था, परंतु तुम क्या देखने गए थे? देखने को एक भविष्यद्वक्ता? सुनिए, जी हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, और एक भविष्यद्वक्ता से बढ़ के, जी हाँ श्रीमान, वो क्या था? कहा, वो भविष्यद्वक्ता से बढ़कर है। वो एक भविष्यद्वक्ता था और वो उस युग दूत था। तुम क्या करने गए थे? देखने को एक भविष्यद्वक्ता? मैं तुमसे कहता हूँ, और एक भविष्यद्वक्ता से बढ़कर, क्योंकि यही वो है जिसके लिए लिखा है, देखो मैं अपना दूत अपने आगे आगे भेजता हूँ कि मेरे आगे मार्ग को तैयार करे। अब यहाँ मलाकी 3 में देखिए, देखो मैं अपना दूत अपने आगे आगे भेजता हूँ। ध्यान दें, अब मलाकी 4 में से पढ़ूं, वो फिर से आने वाला है। देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, और सारे अभिमानी, हाँ ये आज है, मैं सड़क पर जाता हूँ और इन लोगों को देखता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, और वे आप पर हंसते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं, मैं सोचता हूँ ये क्या है। और उस दिन मैं उस बस्ती के किनारे से निकल रहा था, मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा था, और उन्होंने कहा, उइ, चले गए। किसी चीज ने मुझसे कहा, वे परमाणु से नष्ट होने वाले हैं, जल्द ही मैदान पर बिखर जाएंगे, उन्हें रहने दो, तुमने अपनी बात कह दी, तैयार हो जाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। मेरे ख्याल में मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, अपने आप को तैयार करो, अपनी कमरे कस लो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यही कारण है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, सारे अभिमानी और वे सारे दुराचारी लोग अनाज की खूटी बन जाएंगे। ठीक यही होगा। क्या घटित हुआ जब एक महान आप में से कुछ किसान लोग, जब एक बड़ी आग गेहूं के खेत में लग जाती है, वो खूटी हो जाती है, वो फसल को बर्बाद करके राख पीछे छोड़ जाती है। यही तब होगा जब वो हमला करती है। वो दिन आता है, वे भस्म हो जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, वो उनकी ना जड़ ना डालियां को छोड़ेगा, उनका कुछ भी न बचेगा। परंतु मैं तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे, ये 1000 वर्ष हैं। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 1000 वर्ष में आ रहे हैं दुष्टों की राख। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइल के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। अब ध्यान से सुनो, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब ये यूहन्ना नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तो फिर संसार तभी नष्ट हो गया होता। परंतु उसने यहाँ मत्ती 3 में कहा, वो अपना दूत अपने आगे आगे भेजता है, और यीशु ने कहा, ये एलिया है जिसे मेरे आगे आगे मार्ग को सुधारने के लिए आना था। परंतु इस महान परमाणु बम के हमले के पहले मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा, और वो पूर्वजों के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा और पुत्रों के मन को पूर्वजों की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। इस दिन की भविष्यवाणी की। अब आप कहते हैं, ओ वो एलिया जिसे यूहन्ना होना था, वाचा का दूध यूहन्ना था। सही में ये बिल्कुल ठीक बात है, यीशु ने ऐसा कहा और यहाँ पर प्रमाणित किया। यही है जिसके लिए मैंने कहा, परंतु आप देखिए ये वो एलिय्याह नहीं हो सकता जिसे आना था, समझे? ये नहीं हो सकता क्योंकि आप देखिए यदि ये होता तो भविष्यवाणी गलत थी, पृथ्वी तब नष्ट नहीं की गई थी, समझे? परंतु इसके पहले कि प्रभु का बड़ा और भयानक दिन पहले आएगा, मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो देखिए पहली बात पितरों के हृदय को बालकों की ओर फेरेगा। यही उसने पहले किया, नए कार्य क्षेत्र का संदेश लाया। अब मसीह का आना उन कट्टर पुराने पितरों को उस कट्टर विश्वास से बाहर निकालकर उस जन्मते हुए नए विश्वास के अंदर लाना। तब जब वो दूसरी बार आता है और बालकों के हृदय वापस पेंतिकॉस्तल पितरों की ओर फेरना, उस मूल संदेश की ओर। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 में आए और आप उसे ठीक वहीं फिर देखेंगे। इसलिए ये भविष्यवाणी की गई और मेरे भाई हम अंत के समय में हैं, ये ठीक बात है। जैसे कि मिकाया के विरोध में 400 भविष्यद्वक्ता वे कहते हैं हम अंत के दिन में हैं। हम जानते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे चिन्ह दिखाते हैं, नामधारी कलीसियाओं के सदस्य बनाते हैं। वे कहते हैं आओ और सम्मिलित हो जाओ, हम सम्मिलित हो जाएं, तुम जाकर हमारी कलीसिया में सम्मिलित हो जाओ, अपनी सदस्यता ले आओ। आज प्रातः हम खुले हैं आपके लिए, आपकी सदस्यता को उस कलीसिया से यहाँ स्थानांतरित कर दें। ओ निरर्थक, तुम्हारी सदस्यता तुम्हारे लिए क्या भलाई करेगी यदि स्वर्ग में तुम्हारे पास कोई उत्तराधिकार नहीं है? इसे भूल जाओ। झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे चिन्ह दिखाएंगे, परंतु देखो सच्चे भविष्यद्वक्ता वे परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहेंगे। सच्चे चिन्ह परमेश्वर का सच्चा वचन सच्ची कलीसिया के पास आएगा और सच्ची कलीसिया वचन को स्वीकार करेगी और इसमें आनंदित होगी। जब छोटा झुंड जो कि अंतिम दिनों में दिया जाएगा, जो कि अन्य जातियों के बचे हुए होंगे, वे ले जाए जाएंगे। जब यीशु वहां आया नहीं थे परंतु थोड़े ही थे जिन्होंने विश्वास किया। यूहन्ना का छोटा झुंड था जिसने विश्वास किया। यीशु ने उनको वहां से लिया और उनमें से चेले बनाए और चला गया। जब एलिय्याह जब नाश आया, जब नूह का समय आया, वो एक चिन्ह था, वो लोगों को नाव में ले गया। जब एलिय्याह आया उसने लोगों को जिस भ्रम में वे थे वहां से निकाला। जब यूहन्ना आया सारे नबी चिन्ह थे, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, और उसने इस अंतिम दिन में हमसे एक चिन्ह की प्रतिज्ञा की है। अंत के दिनों में एक चिन्ह होगा, ये अंधे का चिन्ह होगा। लोग इसे नहीं देखते, वे इसके ऊपर से होकर निकल जाते हैं और इसे जाने देते हैं। भाई बहनों कलीसियाओं के सदस्य ना बनो। अब इसे बंद करते हुए आपको कह दूं, यदि आपके पास केवल आवेग वाला अनुभव है, कुछ संवेदन, उस पर निर्भर ना करो। प्रिय लोगों ये मत करो। आप मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं सुनता हूँ कि उन्होंने टेप रिकॉर्डर वहाँ पीछे तभी बंद कर दिए। अब मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ, समझे? सुनिए, क्या आप नहीं सुनते? कभी कभी मैं ऐसी बहुत सी बातें कहता हूँ ताकि लोग जो दूर देशों में हैं, परमेश्वर के साथ बने रहिए। अपने सच्चे चिन्ह को ध्यान रखें, आप इसे देखेंगे, ये आपके आसपास है, परंतु लाखों लोग इसके आसपास से होकर निकल जाएंगे और इसे नहीं देखते। जब यीशु आया वे उसे नहीं जान सके, उन्होंने एलिय्याह को नहीं पहचाना। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा जब एलिय्याह ऊपर गया? उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया, निरर्थक। उन्होंने कहा ये निरर्थक अनाप शनाप है। वे बालक जो उनके अपने नगरों में थे जहाँ वो रहा था प्रचार किया था, चिन्ह और आश्चर्यकर्म उस देश में दिखाए थे। जब वे एक चेतावनी आई हम एलिय्याह को नहीं ढूंढ सकते, प्रभु ने उसे बवंडर में उठा लिया, वे ऐसी बात पर हंसे। यहाँ एलिय्याह आता है एलिशा अपने साथ उन्हीं चिन्हों के साथ, मसीह और उसकी कलीसिया का एक प्रतीक। यहाँ एलिय्याह आता है एलिशा वही चिन्ह जो एलिय्याह के थे, सीधा आता है और उन्हें करता है। यहाँ तक छोटे छोटे बालक उसके पीछे चल रहे थे, बोले बूढ़े गंजे तू क्यों नहीं एलिय्याह के समान ऊपर चला गया? देखिए उन श्रद्धाहीन बालकों के साथ क्या हुआ। आज वे हंसते और उपहास उड़ाते हैं। चिंता ना कीजिए भाई, न्याय ठीक इस समय आकाश में है, हरेक के मुख पर लिखा हुआ है। ये ठीक बात है, न्याय आकाश में लटक रहा है, सामर्थी परमेश्वर का क्रोध। उनको तुच्छ समझने वाले जो भले हैं, भक्ति का भेष भरते हैं परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, ऐसों से परे रहना। संवेदन को ना ले, भावुकता को ना ले, किसी भी चीज को ना ले जब तक आप परमेश्वर से आमने सामने भेंट ना कर लें और परमेश्वर के आत्मा को अपने भीतर आने दें। वो आपके हृदय को भर देगा और प्राण को सामर्थ, प्रेम और जलन से भर देगा। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं अगले कुछ दिनों में अपने स्थान को कहीं पा सकूं और मैं वहां तब तक रहूं जब तक मैं अपने अगले बदलाव के स्थान को ना देख सकूं कि कहां है। हमने बहुत समय तक प्रतीक्षा की है, मैंने बहुत लंबे समय प्रतीक्षा की है। मुझे स्मरण है कि मैं अपने घास के मैदान की घास काट रहा था जब मैंने ये घर यहाँ बनाया। प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरी पत्नी रोई क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। कहा संभव है वे उनकी देखभाल नहीं की जा सकेगी। मैंने सोचा मेरी भी एक बूढ़ी माँ है। एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ घास काट रहा था, मैं बैठ गया, एक बिल्कुल स्पष्ट आवाज आई और कहा स्वयं को अलग करो तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैंने कहा प्रभु परमेश्वर मुझे यही आनंदित रख, आप जानते हैं कि मैं किसके विरोध में हूँ। वे सारी बातें अब पूरी हो चुकी हैं। माँ ब्रॉय महिमा में है, माँ ब्रणम भी। प्रभु मेरा अगला प्रस्थान कहाँ है? इन्हीं की दिनों में इस रास्ते पर न्याय मार करने जा रहा है। और भी रास्ते हैं जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, ऐसे स्थान हैं। आप जो भी करते हैं मेरे शब्दों को ना भूलें। क्या आप इसे अपने हृदय में बैठने दें? परमेश्वर एक लोहे की लेखनी ले और आपके हृदयों पर खोद दे ताकि आप इसे ना भूलें। इसे ना भूलें, प्रभु यूं कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर फिर जाएं, वापस आएं। भावना उत्तेजना या किसी चीज पर निर्भर ना करें। आपके अंदर जितना भी है उससे परमेश्वर को खोजें। जब तक आपको कुछ ना हो जो आप ठीक करना चाहते हैं, आप धर्मी होना चाहते हैं, आप परमेश्वर से डरते हैं, आप सही जीवन जीना चाहते हैं, वही कीजिए। आप ये बात ना भूलें क्योंकि हम अंत समय पर हैं। अब स्मरण रखें, हम अंत समय पर हैं। और इसे स्मरण रखें जबकि मैं एक मिनट में प्रार्थना के लिए बंद करने जा रहा हूँ। भूले नहीं, आराधनालय मेरी सुन। और यदि ये टेप अब भी चल रहा है तो ये जहाँ कहीं भी जाए संसार मेरी सुन, एक चिन्ह उठेगा, एक सच्चा चिन्ह। संभव है वो पहले ही उठ चुका हो और उसे अनदेखा कर दिया गया हो। एक सच्चा चिन्ह जो परमेश्वर ने हमेशा दिया वो अनदेखा कर दिया गया। हम प्रार्थना करें। यीशु नासरी, जैसे कि वो महान शब्द उस दिन कुछ सप्ताहों पहले वहाँ खड़े हुए बराबर में बोला, जैसे ही मैं उस पेड़ के पास उस लट्ठे को पार कर रहा था और वो आत्मा पेड़ों की फुनगियों में से होते हुए नीचे उतर कर आया और कहा, नए नियम का यीशु पुराने नियम का यहोवा है। ओ परमेश्वर, मैं इस चट्टान पर खड़ा हूँ और सारी जमीन धसने वाली रेत है और दूसरे सारे मैदान धसने वाली रेत है। प्रभु लगभग 30 वर्षों में यहाँ इस घाटी में निकलते हुए रोया। ये संदेश मैंने एक इंच भी नहीं हटाया। जहाँ से मैंने आरंभ किया वही संदेश वही बात, लोगों को वापस बुला रहा हूँ, संवेदना नहीं परंतु परमेश्वर से मिलने का एक अनुभव और उसके आत्मा से जन्म लेना। ओ क्या बचेगा? केवल न्याय उनके लिए जो इस संदेश को अस्वीकार कर रहे हैं। प्रभु और कुछ बाकी नहीं है। अंतिम चिन्हों की घोषणा के लिए तूने अपने वचन को इतना भर दिया है और इसे न असफल होने वाला सिद्ध कर दिया है कि तू परमेश्वर है और हम यहाँ हैं। यहाँ तक कि जब हम यहाँ महान सुसमाचार फैलाने वालों को आज देश में चिल्लाते हुए सुनते हैं और देश की राजधानी और दूसरे राष्ट्र निर्णय ले रहे हैं और भय छाया हुआ है, और जब हम इन महान लोगों को सुनते हैं वहाँ फ्रांस में भविष्यवाणी हो रही है कि पहला बम लुइविले केंटकी में गिरेगा, सैकड़ों मील तक ये देश का सफाया कर देगा। ओ परमेश्वर, इनके पास सुनने का अवसर है परंतु उनके पास नहीं होगा। अखबारों कलीसिया की चीजें टेलीविजन रेडियो ने इसे स्वीकारा है, कोई बहाना नहीं है। तब प्रभु आपने कहा वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा और कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय कि पहले उसे खींचना ले। अब पिता मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अब मैं एक बूढ़ा मनुष्य हो रहा हूँ और प्रभु मैं नहीं जानता कि हमारे कितने और दिन बाकी बचे हैं। हो सकता है हमारे पास आज भी ना हो, परंतु प्रभु जो कुछ भी बचा है और जो मेरे जीवन में रहा है, ओ परमेश्वर क्या ये संभव है कि आप उसे ले सकते हैं और अपनी महिमा के लिए उससे कुछ करें? प्रभु पहले मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी इच्छा देंगे, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, चाहे वो जो भी हो। मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ तो ये कहा जाए ये बहुत अच्छा किया गया था। यदि ये बड़ा या ये छोटा है, जो कुछ भी आपके महान हृदय में मेरे जीवन के लिए हो, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। एक स्वर्गदूत को कोयले की आग के साथ भेज और हमारे होंठों को शुद्ध कर दे और हमें पवित्र कर दे प्रभु, क्योंकि अंतिम वो महान कोई चीज जो इस पृथ्वी पर घटित होने के लिए निर्धारित है, हमारी आवाज इस पाप के जंगल में चिल्लाने वाली हो, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ये छोटी कलीसिया, ये लोग जो दिन प्रतिदिन सैकड़ों मील कार चलाकर आते हैं, ओ अनंत और प्रिय और कार्यों को न भूलने वाले अब्राहम, इज़ाक के परमेश्वर और याकूब के, जिसने यीशु को मरुओं में से जिलाया और अब वो ऊंचे पर महामहिमन के दहने हाथ पर बैठा है, परमेश्वर देह में रहा, इन लोगों को आशीषित कर जिन्हें मैं तेरे नाम में आशीषित करता हूँ। होने पाए कि ये सदा याद रखें और जाने कि ये एक चिन्ह है, अंत का चिन्ह। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये औरों को जीतने वाले हों, अपने अपने कार्यस्थलों पर जहाँ कहीं भी ये हों, सड़कों पर, कोनों पर, पेट्रोल पंप या जहाँ कहीं भी हों, ये परचून की दुकान पर उस दूध वाले को गवाही दें। ये प्रभु चाहे कुछ भी हो, यदि उनके हृदय को कोई चीज चेतावनी देती है, वे एक गवाह होने पाए, उन्हें पाए कि वे ऐसा भक्ति और पवित्र जीवन जिए जब तक कि वे सब लोगों के द्वारा पढ़ने वाली पत्री ना बन जाएं। परमेश्वर हमारी महिलाओं को आशीषित करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें उनके मुंह को धोने देंगे जो नहीं धोते हैं, उनमें से इजाबेल का सिंगार निकाल दें, उनमें मसीही निर्भीकता हो और उन पर परमेश्वर का आत्मा इतना हो कि वे जाने कि उन्हें वे अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जो वे पहनते हैं, उनके बाल महिलाओं के समान बढ़ें, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है परमेश्वर की दृष्टि में वो डाली बहुमूल्य है जो इन सब बातों से जो अंतिम दिनों में आने वाली है बच जाए, ये परमेश्वर की दृष्टि में गौरवपूर्ण हो, जैसा कि भविष्यवक्ता ने इसे पहले से बता दिया। परमेश्वर इसे प्रदान करे, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता प्रभु, मैं वर्ष दर वर्ष अपनी आवाज में चिल्लाया हूँ और अब जब तक आप ना बढ़ें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप करेंगे और मैं जानता हूँ कि आप करेंगे, क्योंकि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है और उसी पर मैं स्थिर हूँ। प्रभु मैं तो केवल एक गवाही दे सकता हूँ और जब तक आप ही ना खींच लें कोई मनुष्य नहीं आ सकता, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है आएगा। मेरे पास ये आश्वासन है कि आपका वचन इसकी देखभाल करेगा। प्रभु हमें आशीषित करें। और यदि यहाँ वे हों जो केवल संवेदना पर आश्रित हैं, संभव है वे चिल्लाए हों, वे हो सकता है उनके पास पवित्र आत्मा हो, या प्रभु हम उन्हें नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमने देखा है लोग गेंद के खेल में चिल्लाते हैं, हमने देखा है कि सांसारिक मनोरंजन में लोग चिल्लाते हैं, हमने उन्हें इतना आनंदित देखा है कि वे नृत्य स्थल पर चिल्लाते हैं और वे सारी बातें। परमेश्वर आप वो नहीं है, परंतु आपसे मिलने और बात करने के लिए, और आप हमसे बात करें, हम वही चाहते हैं। ओ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इसी मिनट आप पवित्र आत्मा को इस कमरे में भेजेंगे, इस छोटे नम्र स्थान में, उसके आने के लिए कोई भी स्थान योग्य नहीं है, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आप अपने ही तरीके से आप उसे इस कमरे में भेजेंगे, प्राणों को दृढ़ विश्वासी बना दें। प्रभु जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, संभव है कि किसी के मार्ग में वेदी की बुलाहट ठोकर का कारण हो, लोगों से निवेदन और आने के लिए उकसाना, और जब हम अगले वर्ष वापस आएं, हम उन्हें दो गुना अधिक नरक के बालक पाएं वहाँ जहाँ से उन्होंने आरंभ किया था। वे कैसे आ सकते हैं जब तक आप उन्हें राजी ना करें और पवित्र आत्मा उन्हें दृढ़ विश्वासी ना बनाए। प्रभु परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, यदि वो पापी पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की इस प्रातः इस भवन में है, वो पवित्र आत्मा उस दृढ़ विश्वास के सामर्थ्य के साथ आएगा जब तक कि उसके गालों पर से आंसू नीचे ना गिरें और उनके प्राणों पर जा टपकें। प्रभु जिससे वे अपने हृदय की गहराई से विश्वास करेंगे और मसीह को स्वीकार करेंगे, प्रभु इसे स्वीकार करें, उन्हें किसी वेदी की आवश्यकता ना होगी, उनके प्राण उनकी वेदी होंगे। प्रभु इसे स्वीकार करें, तब वे संपूर्ण हृदय से तेरे पास आएंगे और कहें, अब मैं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहता हूं अपने पापों से छुटकारे के लिए, जिनके लिए मैंने प्रायश्चित किया है। प्रभु इसे प्रदान करें, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। आज संसार में हमें सुसमाचार फैलाने वाले दे, वे नहीं जो राजी किए गए और खींचे गए हैं और नामधारी कलीसिया के बालक बन गए हैं। परमेश्वर आप स्वयं कुछ बालकों को खड़ा करें। प्रभु लोग प्रार्थना करें। मैं कुर्नेलियस के घराने के विषय में सोचता हूँ, इसके पहले कि ये कभी अन्य जाति के लिए नहीं हुआ, परंतु वे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो परमेश्वर का जन वो भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ और जब उसने उन वचनों को बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतरा जिन्होंने वचन सुना। परमेश्वर इस प्रकार की सभा प्रदान करें। जब पतरस उन वचनों को बोल ही रहा था, ओ परमेश्वर, वे तैयार थे, वे उपवास रख रहे थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वे निष्कपट थे। वे केवल प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे थे, वे तब तक प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक उन चेलों ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक परमेश्वर उनके मध्य में ना उतर आया और वे उसे देख सकते और उससे बातें कर सकते थे। वे उन हृदयों के साथ बाहर गए कि उन्होंने संसार को जलाकर खस्ता कर दिया। वे निडर थे और उन स्थानों के बीच में जाकर खड़े हुए जहां उनके सर भी काटे जा सकते थे। उन्होंने कहा, क्या हमारे लिए ये ठीक है कि हम तुम्हारी या तुम्हारी संस्थाओं की सुने, या तुम्हारे नामधारी जो मनुष्य की हैं या परमेश्वर की सुने? तुम ही ये देखो। और सीधे ही जैसे उन्हें जाने दिया गया, वे निकल कर गए और यीशु मसीह के नाम को फिर प्रचार किया। परमेश्वर हमें दे, हमें वो दे प्रभु, इस वाले को उठाए जिसके लिए आप हमसे वचन में बोल रहे हैं, उसका अभिषेक करें प्रभु। मैं उसे पुकारता हूँ, उसे भेज प्रभु। ओ परमेश्वर, हमारे भूखे हृदय चिल्ला रहे हैं, प्रभु उसे भेज दे। वो लोगों को पितरों के विश्वास की ओर दोबारा फेर देगा। ये उन्हें नामधारी कठपुतलियों से अलग करके परमेश्वर के साथ वास्तविक अनुभव में, जो उन्हें पेंतेकुस्त पर हुआ, उसमें ले आएगा। एक वास्तविक कलीसिया, फिर उसी संदेश के साथ, उसी विश्वास, उसी शिक्षा, उसी बाइबल, उसी परमेश्वर के उन्हीं चिन्हों के साथ जल रही है। प्रभु हमारे लिए एक भविष्यद्वक्ता खड़ा कर। आज हमारे मध्य में बीमारों को चंगा कर प्रभु। यहाँ वे जो आवश्यकता में हैं, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इस प्रातः बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ वे लोग बैठे हैं। एक रात्रि जब प्रेरित पौलुस सारी रात्रि प्रचार करता रहा और नौजवान इमारत पर से गिर पड़ा और स्वयं मर गया, वो सो गया होगा। उसका अर्थ ये नहीं था, परंतु वो सो गया और वो गिर पड़ा और उसका प्राण उसमें से निकल गया और प्रेरित ने प्रार्थना की और उसमें फिर से जीवन आ गया। ओ प्रभु परमेश्वर, यहाँ बहुत से हैं जो बीमार हो गए और जबकि हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कलीसिया को विसर्जित करें, यहाँ वे बीमार हैं।
ओ गॉड, लेट दैट पावर,
ओ परमेश्वर, वो सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा, जो स्वयं अग्नि स्तंभ में आता है, जो स्वयं को घोषित करता है और स्वयं को प्रकट करता है कि वो कौन है और हम उसका विश्वास करते हैं, वो आज यहाँ हर व्यक्ति को घेर ले, बीमारों को चंगा करे, आत्मा से भर दे और हर प्रकार से छुटकारा दे प्रभु। हमें उसकी आवश्यकता है। हमारे हृदयों को विश्वास से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर, उस ना मरने वाले विश्वास, समझौता ना करने वाले विश्वास, ताकि हमारे पास यहोवा यूं कहता है रहे। प्रभु इसे स्वीकार करें। ये आपके लोग, आपका संदेश, आपके वचन, आपके दास, और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमें तब भी नष्ट नहीं कर सकता जब ये आराधनालय नष्ट हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का सा ये डेरा गिराया जाएगा। हमारे पास एक और है जो पहले से प्रतीक्षा कर रहा है। वो हमारी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि हर वो जो हमारा शत्रु है वो आपका शत्रु है, क्योंकि हम आपके हैं, हम यीशु के बहुमूल्य लहू द्वारा खरीदे हुए हैं। इसलिए तुम शैतानों, जिन्होंने इन लोगों को बीमारी से बांध रखा है, मैं तुझ पर यीशु मसीह के नाम से धावा बोलता हूँ कि इनमें से प्रत्येक से बाहर निकला। परमेश्वर के एक दास के समान इस वचन को सच्चा होने का दावा करता हूँ, तू इन्हें छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर चीज जिसका तूने अपना होने का दावा किया था, वो क्रूस कलवरी पर निरस्तर कर दिया गया। अब तू इन्हें और अधिक पकड़े नहीं रह सकता। अब परमेश्वर प्रत्येक पुरुष और महिला, लड़का या लड़की जो यहाँ है, ये विश्वास करने का विश्वास दें। वचन बोला जा चुका है, यदि तू इस पहाड़ से कहे कि हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करे, विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाती है, तो जो तुम मांगोगे मिलेगा। हम ये जानते हैं, परमेश्वर में हमें ये विश्वास है। यदि हमारे पास कोई विश्वास है, यदि परमेश्वर हम में रह रहा है, हम ये विश्वास करते हैं और मैं ये जानता हूँ कि ये ऐसा है प्रभु। इसलिए आज इसे बीमारी और उद्धार के लिए प्रदान करें, जबकि मुझे ये कहना चाहिए या उद्धार के लिए पहले कहना चाहिए और फिर बीमारी। प्रभु इसे स्वीकार करें, क्योंकि प्राण देह से अधिक मूल्यवान है। परंतु वे जो कभी कभी उनके प्राण बचे हुए हैं और ये पुराना शरीर अभी भी शैतान का है और वो जानता है कि अंत समय में इसे ले लेगा, वो इसे कुचलेगा और इसे वापस वहीं कर देगा जब तक कि मिट्टी के कीड़े इसमें रेंगने नहीं लगेंगे और इसे खा डालेंगे। परंतु वो उस प्राण को कभी भी ना छू सकेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का बहुमूल्य खजाना है। और उस जीवन के द्वारा जैसे कि पत्ती का है, ये वापस परमेश्वर के पास चला जाएगा जिसने इसे दिया है, और अगले ऋतु में आएगा उस नई देह के साथ जिसे शैतान कभी नहीं छू सकता, ना ही बुढ़ापा या कोई और चीज इसे कभी छू सकती है। ये महिमामय देह होगी। प्रभु हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपने लोगों को आशीषित कर, ये तेरे हैं और मैं इन्हें तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं ये यीशु के नाम में मांगता हूँ।
And have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs a leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of life the way that I would have him to, for I have anointed him to play for this purpose, saith the Lord.
That is not my word. That is his word.
ये मेरा शब्द नहीं है, ये उसका शब्द है। ओ, इस घड़ी में हमारी क्या आवश्यकता है, इस घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं। मित्रों, क्या आप नहीं समझते कि परमेश्वर महान उत्सवों में नहीं आता, वो नम्रों के बीच में वास करता है। वो साधारण नम्र बातें, हो सकता है आप अनुभव नहीं करते कि इस समय क्या हो रहा है, इस भवन में क्या घटित हो रहा है, इस क्षण लोगों के मध्य में क्या घटित हो रहा है। क्यों पवित्र आत्मा ने थोड़ी देर पहले कहा, मैं हिगनबॉथम के द्वारा कुछ भी बनाता हूँ, इस संदेश पर ध्यान रखिए, क्योंकि मैं इसे लाया हूँ कुछ या इस प्रकार का कुछ कि आपको इस आने वाली चीज जो आ रही है चेता दूं। देखिए क्या घटित होता है। कुछ बातें वचन जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैंने इन्हें कभी छुआ ही नहीं, और उनसे अलग चला गया, मैं उधर पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाया गया, समझे? इनमें से कुछ वचन मैंने छुए तक नहीं, मैं पूरी तरह से दूसरी चीजों में चला गया। एक बार किसी चीज को आते हुए सुना और पलट कर देखा कि ये कहाँ था। अब आत्मा हर दिशा में बोल रहा है, ओ लोगो, ईमानदार और निष्कपट हो जाओ, उन पर निर्भर होने का यत्न ना करें। देखिए, आप किसी महान चमकदार चीज की ओर देख रहे हैं। जब सारे भविष्यद्वक्ता, यहाँ तक कि दाऊद ने कहा, प्रभु के आगमन पर हर पहाड़ नीचा किया जाएगा और नीचे स्थान ऊंचे किए जाएंगे, कहाँ पहाड़ मेड़ों की नाई उछलेंगे और पत्तियाँ अपने हाथों से ताली बजाएंगी, क्यों? लोगों ने क्या सोचा ये तब होगा जब यीशु आया? ये किस में बदल गया? एक बूढ़ा नम्र प्रचारक बिना शिक्षा के 9 वर्ष की आयु से जंगल में चला गया, मनुष्य से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रशिक्षित होने के लिए। बाहर निकल कर आया और भेड़ की खाल लपेट खड़ा हो गया, मुंह पर तमाम ऊन रोए से भरा हुआ था और बाल उसकी गर्दन पर लटक रहे थे, और जंगल में टिड्डियों पर निर्वाह कर रहा था, घास की टिड्डी, जंगल की टिड्डियां और शहद। जब वो जंगल में रहा, वो आकर किनारे कीचड़ में खड़ा हो गया, मसीह के आने की घोषणा करने लगा, और मसीह वहाँ से चलता हुआ आया, एक साधारण मनुष्य लोगों के मध्य में, और बपतिस्मा लिया, और सारे भविष्यद्वक्ताओं ने घोषणा की कि एक ऐसी महान घटना घटने वाली है जो कभी नहीं घटी, और ये हुई थी। देखिए, वे किसी महान चमकदार कुछ घटित होने की राह देख रहे थे। देखा, पवित्र आत्मा चमकता नहीं है, ये विभा है। चमक संसार की है, विभा परमेश्वर की है। मुझ पर प्रभु विभा बरसा, ये मेरी प्रार्थना है। मुझे नम्र कर, मुझे ले, मुझे ढाल और मुझे बना। जीवित परमेश्वर का आत्मा मुझ पर ताजगी से आए, मुझे ढाल, मुझे अपना बना। प्रभु बस मुझे ले ले। मैं मसीह की आत्मा से अवगत हूँ कि वो इस भवन में इस प्रातः घूम रहा है। वो परमेश्वर जो संसार का न्याय करेगा इस समय यहाँ पर है, ऐसे ही निश्चित रूप में जैसे मैं यहाँ प्रचार मंच पर खड़ा हूँ। इसके 1, 2, 3 प्रमाण हुए वचन के ठीक वैसे ही जैसे बाइबल ने कहा है। आप सुनेंगे, उस समय के बाद से वो बंद हो गया। 1, 2, 3 हर चीज आत्मिक क्रम में है, हर चीज वचना अनुसार है। ओ, अपने हृदयों को खोलें और समझें। ऐसा समय, इस समय क्या हो सकता था? वे ऊपर की कोठरी में थे जब एक मत होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जो प्रभु पर आशा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे, उनके उकाब के समान नए पंख लगेंगे। वहाँ केवल ऐसे ना पहुँचे और कहें, प्रभु अब मुझे अपने पापों के लिए खेद है, मैंने विश्वास से स्वीकार कर लिया था कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, और चले जाएं। वे जो प्रभु पर आश्रित हैं, सप्ताहों, दिनों, जो भी हो, वे नया बल प्राप्त करेंगे, उनके उकाब के समान नए पंख लगेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलते हैं, वे श्रमित नहीं होंगे। प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे सिखा कि प्रतीक्षा करूं, प्रभु पर आश्रित रहूं। दिन और रात निरंतर अन्ना मंदिर में थी, निरंतर दिन रात प्रार्थना कर रही थी। जब वे यीशु को मंदिर में लाए, वो अंधी उस भवन में आई, चारों ओर घूमी, एक अंधी महिला, अपने हाथ उस पर रखे और परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि अपने शारीरिक अंधेपन में वो अपनी आत्मा में, वो आत्मा के द्वारा चलाई गई कि वो कहाँ खड़ा था। वहाँ पीछे शमौन प्रार्थना के कमरे में प्रतीक्षा कर रहा था, जानता था कि उसके पास पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है कि वो ना मरेगा। एक बूढ़ा मनुष्य, 80 लगभग 90 वर्ष बूढ़ा, और उसने लोगों को खुल्लम खुल्ला बताया था कि मैं मृत्यु को तब तक ना देखूंगा जब तक मैं मसीह को ना देख लूं। और ठीक उसी मिनट में एक छोटा साधारण बालक, वो क्या था? कोई उत्सव नहीं, सारे गार्ड सावधान अवस्था में खड़े थे। जब वे मसीह को भीतर लाए, अच्छी भली प्रकार से लपेटे हुए सुंदर सुगंध सहित और छोटे बालकों जैसी गंध जो समर्पित करने के लिए लाए गए थे, परंतु वो साधारण माँ जिसके विषय में बुरी बातें बोली गई थी, उसके पास विवाह के बंधन से पहले बालक था, पशुओं के ओढ़ने में लिपटा हुआ था, जुआ, बैल के जुए की वस्तु उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, उस भवन में चलता हुआ आ रहा था, हर कोई उससे दूरी बनाए हुए था, परंतु यहाँ एक छोटा झुंड आया। वो छोटा झुंड, एक अन्ना, दूसरा शमौन, पंक्ति में होते हुए आ रहे थे, न जानते हुए कि कब उसकी दृष्टि उस पर पड़ेगी, और अपने हाथ उठाए और कहा, प्रभु अब अपने दास को शांति से विदा कर, तेरे वचन के अनुसार मेरी आँखें तेरे उद्धार को देख रही हैं। देखा देखा कुछ भी महान चमकदार नहीं, एक विभा। यद्यपि उसके विषय में बुरा बोला गया, वो एक चिन्ह था, और आज चिन्ह को बुरा बताया गया है। इसके पास कोई सहयोग नहीं है, इसे बुरा भला बोला गया और सब कुछ कहा गया, परंतु ये एक चिन्ह है जिसको कि अनदेखा किया गया। बाइबल इसके विषय में बताती है एक चिन्ह जिसके लिए बुरा बोला गया। जैसे हम घर की ओर यात्रा करते हैं, इसे स्मरण रखें। इस संदेश को अपने हृदय से कभी भी अलग ना होने दें। आप जो भी करें ये ना करें, इस पर दिन रात ध्यान करें और दिन रात प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर को अपनी गवाही खड़ी करनी है। हम तैयार हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि समय और ना रहेगा। हम आ रहे हैं, कैसे भाई बहनों, ये कब होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है आज, ये कल हो सकता है। यदि ये आज नहीं है तो मैं कल इसकी राह देखूंगा, और संभव है इस वर्ष, अगले वर्ष, 10 वर्षों में, संभव है 30 वर्षों में, मैं नहीं जानता ये कब होगा। परंतु मैं अब से आगे कहता हूँ, हर मिनट तैयार रहो, और किसी बात को यूं ही साधारण रूप में ना लें। ये ना करें, आप दिन या रात चैन ना लें जब तक आप परमेश्वर से बात ना कर लें। अपने को धर्म उन्माद से अलग रखें, भावना में होकर कार्य ना करें, ये ना करें। ये अतिवादी चीजें लेकर आता है और इससे लोगों को डराता है, समझे, क्योंकि अतिवादी धर्म उन्माद है। इसे स्वीकार ना करें, बिल्कुल नहीं। आप तब तक टिके रहिए जब तक परमेश्वर से बात ना हो। सबके ऊपर ये आपका प्राण है, और आप ही अनंतता में जीने जा रहे हैं जो सामने है, और आप निश्चित रहें कि आप केवल हाथ ना मिलाएं और मत सार बोलें या किसी चीज को विश्वास से स्वीकार करें। आप ये ना करें, आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर आपसे बातें करें, और देखिए आपको क्या होता है। अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें और क्या घटित होता है, तब आप जानेंगे कि आपने परमेश्वर से बातें की हैं या नहीं। आप जिन्होंने आज प्रातः उस पर विश्वास किया है, आप जो मेरे सामने बुलाहट के विषय में कहा, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उन्होंने कैसे किया? जितनों ने प्रभु पे विश्वास किया, जितनों ने प्रभु पे विश्वास किया, उन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। यदि आपने नहीं, हमने कभी भी वेदी पर बुलाया नहीं, वे लोग कभी आगे नहीं आए। जब आप वो करते हैं, आपको सब कुछ मिल गया। यहाँ एक व्यक्ति सामने वेदी पर आया, अखड़ सा दिखाई दे रहा था और घुटने टेक के, क्योंकि किसी ने उसके लिए कोशिश की। आपको दुगनी मेहनत करनी है कि उसे कभी फिर लेकर आए, समझे। और आप क्या करते हैं, आप उसमें हर चीज पाते हैं। और यीशु ने कहा, सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। वचन के साथ स्थिर रहिए, बाकी परमेश्वर कर देगा। ये सही बात है, परमेश्वर बाकी सब कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज रात्रि आपको फिर देखने की आशा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप में से प्रत्येक जो आ सकता है, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सो को बाहर रुकना पड़ता है। आज रात्रि मैं अपने भाई को सुनने के लिए यहाँ होऊंगा, यदि ये परमेश्वर की इच्छा होगी। मैं उसके दोनों संदेश नहीं लेना चाहता। भाई नेविल परमेश्वर का प्यारा जन है, और मैं जानता हूँ कि कौन है। जब मैं इन्हें प्रचार करते सुनता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सीधा उनके हृदय से आ रहा है, मैं जानता हूँ। और भाई नेविल, जैसा कि उन्होंने उस रात्रि टिप्पणी के साथ कहा, मैंने एक टिप्पणी करी थी कि किसी दिन मैं उसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दूंगा। मैंने दिया, क्यों? मैंने उसके अंदर निष्कपटता और ईमानदारी देखी। मैं जान गया यदि वो उसे कभी दिया जा सके और देखा जाए, यदि वो इसे वास्तव में देख सके, उसकी आंखें खुल जाएंगी, वो इसे ग्रहण करेगा। मैंने प्रतीक्षा की और कलीसिया को बताया, आप चिंता ना करें, वो मेथोडिस्ट प्रचारक बिल्कुल ठीक आएगा। और आज वो यहाँ है, आराधनालय का एक पास्टर, और जितना मजबूत वो कार्य में हो सकता है वो है संदेश में। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और मैं जानता हूँ जब मैं भाई नेविल की ओर से कुछ आता हुआ सुनता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सही और परमेश्वर की ओर से आ रहा है, क्योंकि वो इस प्रकार का मनुष्य है। मैंने अपने हाथ आपके रुमालों पर रख कर प्रार्थना की है। विश्वास करता हूँ कि आप में से प्रत्येक ने परमेश्वर से आशीष पाई है। ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके हृदय पर है। हम यहाँ इसलिए नहीं आते कि परमेश्वर से आशीष लें। जब तक कि हम यहाँ आते हैं, हर दिन जो हम सांस लेते हैं, हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। हम यहाँ क्या करने आते हैं? सुधार, अपने हृदयों का खतना करने, और परमेश्वर के सामने उपस्थित होने, और परमेश्वर पर संपूर्ण हृदयों से विश्वास करने। प्रभु के वचन को याद रखें और भूले नहीं, और परमेश्वर की ओर से भेजे गए इस सच्चे चिन्ह को देखने में असफल ना हो। और अब मैं भाई नेविल को सेवकाई देता हूँ, वो जो भी चाहे कहें।
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here, and I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message,
amen,
which I believe,
yes,
because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
आप इससे मीठा और कुछ नहीं मांग सकते क्या आप सच्चे भाई से? कारण कि मैं देखिए मित्रों, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप भाई नेविल से प्रेम करते हैं, आप सब परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि कोई ऐसा समय हो कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए तो वो आज है। हमें एक दूसरे के इतना समीप होना चाहिए भाई कि हम जैसे सगे खून के भाई बहनों से अधिक हों। ये प्रेम है जो हमारे हृदयों में एक दूसरे के लिए होना चाहिए, श्रद्धा और आदर पूरी पूरी ऊंचाइयों से। और मुझे ये पसंद है, मुझे वास्तविक चीजें पसंद हैं। और भाई नेविल और भाई हिगिनबॉथम को सुने भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि भाई फंक थे। मैं तो उनके सामने बोल भी नहीं पाया। जो संदेश उन्होंने पीछे दिया वो आता है, वे परमेश्वर की ओर से आते हैं। वे संदेश मित्रों उन्होंने वास्तव में किया। कोई भी जिसमें आत्मा की परख हो, परखने वाला जानता है। परंतु यहाँ क्या है, भाई नेविल को इतना पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि आप देखते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता जब तक कि वास्तव में मेरे पास कुछ परमेश्वर से आपको बताने के लिए ना आए, समझे? और मेरे पास ये मेरे हृदय में 2 या 3 सप्ताह पहले आया था, और मैंने इसे पिछली रात्रि तक नहीं देखने पाया और कुछ वचनों को देखा। यही कारण है कि मैं आपको ये देने आया हूँ। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, देखा? आप जो भी करें, अब ये आप पर निर्भर है, आप समझे? परंतु मेरा उत्तरदायित्व समाप्त हुआ। परंतु भाई नेविल और मैं हम इसी प्रकार थे। यदि मैं यहाँ पर आता और कभी कभी बोलने के लिए कुछ और इस प्रकार से और भाई नेविल के पास परमेश्वर से संदेश होता था तो मैं बैठ जाता था। वास्तव में मैं हमेशा परमेश्वर के संदेश को स्थान दूंगा, समझे? और हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही करते हैं और यही कारण है मैं कहता हूँ मैं यदि परमेश्वर मुझे कुछ देता है तो फिर कहने के लिए, और यदि परमेश्वर भाई नेविल को कोई चीज देता है, मैं यहाँ प्रचार पर रविवार प्रातः रविवार रात्रि जब कभी भाई नेविल होते हैं वो मेरा उतना ही भाई होता है। वो मेरे पास आकर कहता है, भाई ब्रणम मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के दास हैं, परंतु प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया है, तुम ये करोगे क्या? तुम नहीं करोगे? हाँ, मैं उसमें वैसे ही करता हूँ। यदि वो बोलने जा रहे थे और मैं कहता हूँ भाई नेविल क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है, मुझे लोगों को ये अभी बताना है, और वो करता है, भाई नेविल एकदम से रास्ते से हट जाते हैं, हमें से कोई भी एक दूसरे के लिए। देखिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, और तब यदि हम मेरे पास कोई विशेष बात ना होती है तब मैं उन्हें प्रचार करते हुए सुनना पसंद करता हूँ। मैंने सुना पिछले रविवार रात्रि, कितनों ने उन्हें सुना ऐसा शानदार संदेश। मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने प्रातः कहा मैं उसमें बंध गया। और लोगों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके पास पर्याप्त परमेश्वर का वचन है कि आप निश्चय ही सही जीवन जिए और सही रहें। अब परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई नेविल।